साक्षात ब्रह्ममयो हरि। हंसांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया।
तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। अंशांशेन चतुर्धागात्
भी भगवान एषः ये साक्षात् स्वयं ब्रह्ममयः वेद प्रतिपाद्य हरिः श्रीकृष्ण। अंशांशेन अपने अंशों के साथ चतुर्धा चार अगाध हुए पुत्रत्वं पुत्रता प्रार्थितः याचना की जाने पर सुरैः देवताओं द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इति संज्ञया इस नाम से अनुवाद। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे, उनके नाम पवित्र नाम हैं राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्ति सुकला नियमे न तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते। ये सभी रूप अस्थाई रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर ही महाराज दशरथ के पुत्र बने। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार की कथा वंश परंपरा के अनुसार कहे। क्षत्रियों के दो वंश बड़े प्रसिद्ध हैं, एक विवस्वान का वंश और दूसरा सोम का वंश। इस समय जो सूर्य लोक के स्वामी है उनका नाम है विवस्वान और चंद्र लोक के जो स्वामी है उनका नाम है सोम। तो क्षत्रियों की दो परंपरा बहुत प्रसिद्ध है और भगवान ने क्षत्रिय वंश को ही सबसे अधिक भाग्यशाली बनाए अपने प्राकट्य द्वारा। तो विवस्वान महाराज के वंश में श्रीराम के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और सोम वंश में स्वयं अपने रूप से। स्वयं साक्षात भगवान। नवम स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने विवस्वान के वंश का वर्णन किया। तो सर्वप्रथम किसी भी वंश के आदि प्रवर्तक भगवान है गर्भोदकशायी भगवान। गर्भोदकशायी भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान हुए। फिर विवस्वान के पुत्र हुए सत्यव्रत महाराज जो इसमें मनु हैं, इनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के पुत्र परंपरा में बाद में चलकर राजा हरिश्चंद सगर महाराज, राजा हरिश्चंद खटवांग आदि राजा, खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु के अज के दशरथ और दशरथ पुत्र हुए भगवान। ये परंपरा है। और उस सोम वंश में भी मूल प्रवर्तक तो भगवान नारायण है। गर्भोदक सही भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्री, अत्री से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुर्वा, पुरुर्वा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति, जजाति से जादु। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस वंश में आए। तो भगवान का यह स्वभाव है अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं। तो भगवान श्री राम सीता जी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। सीता समारोपित वाम भागम, सीता भी रामम, रामम। वैसे तो स्वयं ही राम है। राम का अर्थ ही होता है जिनमें योगियों का चित्त रमण करता है, जो परम सुंदर है, सर्वकर्षक है, उनको राम कहते हैं। महामंत्र में यह राम शब्द है। कभी कभी इस बात पर विवाद होता है कि ये राम शब्द किस लिए है, किसके लिए। राम शब्द वास्तव में भगवान के सभी स्वरूपों के पूर्ण नाम है भगवान का, और इसको स्वतंत्र भी महामंत्र कहा जाता है। हम लोग जो महामंत्र मानते हैं हरे कृष्ण राम, तो इसका विश्लेषण कर दिया जाए, केवल हरे हरे एक जगह रख दिया जाए, कृष्ण एक जगह राम, तो तीनों महामंत्र है शास्त्र कहता है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। राम का अर्थ ही होता है जिनमें सबका चित रम जाए, अर्थात जो अत्यधिक आकर्षक हैं। और मुनियों का मन जिनमें रम जाता है वे हैं राम। जिन मुनियों का मन संसार के किसी भी रूप में नहीं रम सकता है वह निर्द्वंद और अनासक्त मन भी भगवान के लिए दीवाना हो जाता है। इतना सुंदर है भगवान। ये कथा है जब भगवान जनकपुर गए तो महाराज जनक के पास यह खबर गई कि विश्वामित्र जी दो शिष्य के साथ आए और वे अद्भुत शिष्य हैं उनके। जनक महाराज अपने मंत्रियों के साथ आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। विश्वामित्र जी उस समय के उपवन में बगीचे में ठहरे हुए थे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी सेवा में रहते थे। तो जनक जी महाराज के विषय में यह ख्याति है वेद में भी और लोक में भी कि वे परम विरक्त, किसी रूप में, किसी शब्द में, गंध में, स्पर्श में उनकी कोई आसक्ति नहीं। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो वे एक टक देखते ही रह गए। और लिखा गया है कि सचमुच विदेह उसी दिन विदेह हो गए, देह का स्मरण नहीं रहा। पुनि पुनि प्रभु ही चिताव नर ना हो, पुलक गात उर अधिक उछार। बारंबार भगवान के मुख पर ही वे देख रहे थे। तो संसार का इतना प्रसिद्ध विरक्त व्यक्ति जो किसी रूप में, हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही हनुमान जी का स्वभाव है। सदा भगवान के चरण कमल की सेवा में रहते हैं। तत्चरण सन्निकर्ष अभिरत आशक्त परम भागवत। हनुमान जी इस बात को समझ चुके हैं कि जीवन का सर्वसार है भगवान श्री राम की सेवा करना और उनसे प्रेम करना। तो जो इस फिलॉसफी को, इस सिद्धांत को समझ चुका है और उसमें रत रहता है, अभ्यस्त हो जा रहा है उसको भागवत कहते हैं। और ऐसे भागवतों में भी जो व्यक्ति पूर्ण पारंगत है भक्ति योग में, भगवान के अलावा और कुछ सपने में भी नहीं समझता है, न कहीं उसका चित जाता है, उसको परम भागवत कहते हैं। परम भागवत शब्द का अर्थ एकादश स्कंध में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के न्यास से, न्यास में जैसे रासलीला में थिरक रहे हैं, नच रहे हैं या गोचरण के लिए जा रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, तो उनके चरणों का, उनके सौंदर्य का इतना स्मरण होता है कि उस भक्त को तीनों लोकों का राज्य दिया जाए और यह कहे उसको कि केवल एक मिनट के लिए स्मरण छोड़ दो और हम तुम्हें तीनों लोगों का राज्य देंगे, तो महाभागवत उस राज्य का तिरस्कार करता है, स्वर्ग का कुछ का, लेकिन एक सेकंड भी भगवान को नहीं भूल सकता, छाना मत कभी भी नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, परम भागवत। किम पुरुष वर्ष में अन्य लोगों के साथ वे भगवान की इस तरह उपासना करते हैं। उपासना में मुख्य है भगवान के गुणों का वर्णन, तो वे इस तरह वर्णन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान के गुणों को कहते हैं। ओम नमो भगवते, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। हम लोगों को इस्कान में बराबर यह बात बताई गई है कि भगवान का अर्थ होता है संपूर्ण छह ऐश्वर्य, बारंबार उसे बताने की आवश्यकता नहीं। तो श्रीराम अपरिसीम छह ऐश्वर्यों से युक्त है। भगवान शब्द का वास्तविक प्रयोग श्रीराम में होता है, उपचार में नहीं। उत्तम श्लोक आय, हे उत्तम श्लोक, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्रीराम को उत्तम श्लोक कहा जाता है। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जिनका श्लोक यश उत्तम है, श्रेष्ठ। और उत्तम का एक अर्थ है जिनका यश, जिनका कीर्तन किसी जीव को तम से ऊपर उठा देता है, प्राकृत जगत से पार कर देता है। भगवान का यश ऐसा है, भगवान का नाम रूप गुण और उनकी लीला ऐसी है कि यदि कोई जीव सुनता है और कहता है पुण्य श्रवण कीर्तन, तो वह तमोगुण को अर्थात प्रकृति के राज्य को पार कर जाता है। भगवान के नाम का ऐसा आधार है, गुण का ऐसा आधार है, केवल आश्रय मात्र से वह व्यक्ति प्रकृति के राज्य से बाहर हो जाता है। कभी कभी किसी के प्रश्न, मन में प्रश्न उठता है, क्या है हरे कृष्ण करने में? ये हरे कृष्ण करना एक लिफ्ट पर चढ़ने जैसा है, और यह एलिवेटर, यह लिफ्ट कहां से नीचे उतरा है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है। जैसे इस जगत में हम लोग कुछ शब्द सुनते हैं, लेकिन वह शब्द हमारे ही स्थान का नहीं होता है, होता है, हो सकता है बीबीसी लंदन का शब्द आ रहा हो या दिल्ली का शब्द आ रहा हो, शब्द भी भिन्न भिन्न जगह से आते हैं। तो ये महामंत्र कहाँ से आया है, या भगवान का कोई भी नाम कहाँ से आया है? गोलोक से आया है, यह प्राकृत शब्द नहीं है। और गोलोक से एक लिफ्ट की तरह उतरा हुआ है, जो भाग्यवान इस लिफ्ट का आश्रय लेते हैं वो तो गोलोक जाएंगे, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया। तम से कैसे करेंगे? केवल जिह्वा का बटन दबाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल के नेताय। यह गोलोक से भगवान अपना नाम दिए, लेकिन हाय रे, मेरी उसमें रुचि नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु कहते, नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मेदृश विहाजनी नानुराग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नाथ, आपने अपने अनेक नामों को इस जगत में दिया। अनेक नाम क्यों कृष्ण दिए? इसलिए कि लोगों की भिन्न भिन्न रुचि है, अतः भिन्न भिन्न नाम भगवान ने दिया, जिसकी जिसमें रुचि हो जपे। नाम नाम अकारि बहु था, नामों का अनेक प्रकार प्रकट किया और उनके जपने में काल हटा नियमित, काल की पाबंदी भगवान ने नहीं लगाया कि भोर में ही जपो दोपहर में नहीं जप सकते, या कोई पात्र का नियमन नहीं किया कि जप सकते हैं स्त्रियां नहीं जप सकती या बच्चे नहीं जप सकते हैं, कोई नियम नहीं है, छूट है कोई भी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी काल में और किसी भी वॉयस के तरंग में। जैसे लाउड स्पीकर होता है तो उसका रेगुलेटर होता है, तो आप हाई बोलिए चाहे मंद बोलिए कोई बात नहीं, जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए, बहुत गला फाड़ करके और दूसरे दिन बिल्कुल बोला ही न जाए ऐसा नहीं जप करना चाहिए, नॉर्मल आनंद से बोलना चाहिए जप में और कीर्तन में भी। तो यह कोई पाबंदी नहीं, जैसा बोलना चाहे ठीक है, अगर जो बहुत चिल्लाना चाहते हैं तो चिल्ला रहे, जो मंद जपना चाहते हैं जप है, जो मध्यम जपना चाहते हैं घर में ऑफिस में कार में मंदिर में विद्यालय में कोर्ट में कहीं भी जप कर सकते हैं। नियमित स्मरण न काल, यदि भगवान की कृपा को देखा जाए कि भगवान ने अपनी कृपा का पूर्ण प्रकाशन किस कार्य में किए हैं तो वह है भगवान का लीला करना इस जगत में। भगवान जो लीला करते हैं और अपना नाम प्रकाशित करते हैं इस जगत में, यही भगवान की सर्वोपरि कृपा है। एतादृशी तव कृपा, एतादृशी का अर्थ है अनुपमा, आपकी ऐसी कृपा कैसे आप अपने गुण को प्रकट किए, लेकिन दुर्दैव भी मेरा ऐसा है कि आपकी कृपा से टक्कर लेकर आपकी कृपा को हरा दिया मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि हे कृष्ण आपकी रहा है उसको दुर्दैव या सुदैव कह, क्यों नहीं नाम में रुचि हो रही है, क्यों नहीं भगवान के गुणों के वर्णन में रुचि हो रही है। दुर्दैव, दैव का अर्थ है पूर्व का कर्म, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका डॉक्यूमेंट चलता है, खास करके कोई व्यक्ति आप ऐसा मत समझिए को देह से और पैसा से रहा है, कागज न रहे तो नहीं जा सकता है, यदि पासपोर्ट न रहे वीसा न रहे और कुछ न रहे तो नहीं जा सकता है, पैसा होने से क्या होगा और शरीर होने से क्या होगा। तो देखने में लगता है कि शरीर से जा रहा है या पैसा लेकर के जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है पासपोर्ट से और वीसा से, तो उसके साथ हो रहते हैं सब जगह। हम लोग इस संसार में हैं तो हमारा कर्म फल साथ साथ लगा हुआ है और वही एक विशेष प्रकार की मति को जन्म देता है, बुद्धि कर्मानुसार है, जैसा कर्म किए हैं वैसी बुद्धि बनती है। तो दुर्दैव हमारा ऐसा है कृष्ण, हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में ऐसा बुरा कर्म किया है कि आपके नाम को मेरा चित्त पसंद नहीं कर रहा है और दुनिया की सारी बातों को पसंद कर रहा है, दिन भर काम कुछ बातचीत करता रहता है लेकिन 16 माला पूरा करने में नानी मर जाती, ऐसा मेरा दुर्दैव। एक तरफ जीव का कर्म फल और दूसरे तरफ भगवान की कृपा, वो टकरा कर कृपा हार गई, कहने का आशय ये ऐसी आपकी कृपा लेकिन मेरा दुर्दैव ऐसा है कि नाम में रुचि नहीं। यदि नाम उच्चारण में किसी जीव की रुचि नहीं हुई तो उसके बहुत भयंकर पापों का एक परिणाम है, बहुत बड़ा पाप आकर के बाधा दे रहा, जप चालू नहीं कर सका व्यक्ति। जो लोग करते हैं भले कम बेसी करें तो उनका दुर्दैव बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल करते ही नहीं है उनका तो दुर्दैव बहुत प्रबल है, बहुत सीरियस रोग है, सावधान होने की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का यश है इस जगत में इसीलिए है कि हमको तमह से पार करे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। पहले जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास आता था तो गुरु से प्रार्थना करता था तमसो मां ज्योतिर्गमय, मां का अर्थ माम संस्कृत में कभी कभी अनुस्वार नहीं दे करके माँ का प्रयोग किया जाता, माँ माने माँ मुझको, माँ मुझको तमसह तमह से अज्ञान से ज्योतिर्गमय, हमको ज्योति में डालिए हे गुरुदेव, हमको ज्ञान दीजिए, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, गमय का अर्थ है हमारा हाथ पकड़ करके सहारा देकर के हमको असत से सत की ओर ले चलिए। इस तरह से प्रार्थना करता था शिष्य। तो इस संसार में किसी को तमोगुण से अज्ञान से पार करने की अगर शक्ति किसी में है तो है भगवान की लीलाओं में। श्रवण और कीर्तन से जीव शुद्ध हो जाता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। केवल सुनने से और बोलने से जीव की शुद्धि हो जाती है। तो भगवान को इसीलिए एक नाम दिया गया है उत्तम श्लोक, और दूसरा उत्तम श्लोक का अर्थ है उत्तम ही श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। उत्तम लोग ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनकादि, उत्तम लोग जिनके जिनका यश गाते हैं उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम ही ब्रह्मा नारदादि भी श्लोक्यते स्तुयते इति सा उत्तम श्लोक। उत्तम लोग भगवान का यश गाते हैं। संसार में आप देखिए जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और वे सब कृष्ण का यश गाते हैं, इसीलिए कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक। अथवा श्लोक का अर्थ है छंद, कविता। ये अर्थ हम लोग सब लोग जानते हैं, श्लोक गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक। तो उसका अर्थ होता है उत्तम उत्तम श्लोकों में जिनका यश गाया गया, जिनके विषय में उत्तम उत्तम श्लोक प्रसिद्ध हैं, वे हैं उत्तम श्लोक। किसी भी व्यक्ति का वर्णन इस संसार में किया गया है लेकिन श्रेष्ठ श्लोकों में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, और परमहंस महामुनियों के द्वारा यदि किसी की प्रशंसा हुई है तो भगवान की। भगवान के विषय में वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, उतना सुंदर श्लोक और किसी के बारे में नहीं है। मध्य युग के या उसके पहले के भी कालिदास आदि ने जो कविताएं लिखा है, बड़े बड़े संस्कृत के कवियों ने, तो अधिकांश कविता भगवान के विषय में है, और बहुत उत्कृष्ट कविता है। जो कविता की दृष्टि से देखिए तो कृष्ण करणामृत बहुत आगे है, गीत गोविंद बहुत आगे है, भगवान के यश का वर्णन किया गया है। बड़े बड़े साहित्यकार विद्वान झूम जाते हैं उन श्लोकों को बोलने में, गाते हैं उत्तम श्लोक। गोपी गीत में गोपियों ने जो गाया है उसको गाने पर लगता है कि समाधि लग जाएगी। केवल गाने से यदि व्यक्ति अर्थ समझे तब तो कहना ही क्या। इस तरह से पर सहस्र कोटि कोटि श्लोक हैं कृष्ण के विषय में उत्तम उत्तम, इसलिए कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं हे उत्तम श्लोक, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का यश निष्कलंक है, उसमें तम नहीं है, उसमें अज्ञान नहीं है, धब्बा नहीं है। नम आर्ज लक्षण शीलव्रताय, भगवान के बहुत से अवतार होते हैं और बहुत से दूसरे लोग भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जैसा शील है, जैसे आर्ज का जो लक्षण होना चाहिए, सीधा साधा निष्कपट, बाहर भीतर समान, वह अद्भुत है। आर्ज लक्षण शीलव्रताय, भगवान में अद्भुत शील है। भगवान श्री राम के शील का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अब कहीं भी देखिए भगवान का शील भंग नहीं होता है। तो भगवान परिचय करा रहे थे बानरों से, ऐसा होता है ना कि नया नया दो आदमी मिलते हैं तो कोई व्यक्ति उनका भी परिचय बोलता है, उनका भी परिचय बोलता है। तो भगवान परिचय दे रहे हैं अपने बानरों से, अपने गुरु का, कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये गुरु महाराज हैं, हमारे कुल पूज्य हैं, और इनकी कृपा धनुज रण मारे, मैं इनके आशीर्वाद से राक्षसों को मारा हूं युद्ध में। देखिए भगवान का यह सब, इनकी कृपा धनुज रण मारे, उनसे क्या वशिष्ठ जी की कृपा से मारे थे। सत्य बात बोली जाए तो ऐसी बात नहीं है कि वशिष्ठ जी की कृपा से मारे थे, भगवान भगवान है, सर्व कला विशारद है, युद्ध कला विशारद है, लेकिन कितना मधुर शब्द बोल रहे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। और गुरु जी से परिचय दे रहे हैं वानरों का, तो भगवान ये कहते हैं गुरुदेव ये सब हमारे सखा हैं और इन्होंने हमारे लिए जीवन की बाजी लगा दिया युद्ध में, अपना जीवन की बाजी लगा दिए, ये तो आपका आशीर्वाद है कि एक भी वानर नहीं मरा लंका, ये आपकी कृपा है, तो ये हमारे लिए जीवन की बाजी लगा दिए। और इधर बोल रहे हैं कि गुरु जी की कृपा से मैं युद्ध भूमि में जीता, इसको शील कहा जाए। शील शब्द का अर्थ होता है बड़ों के सामने नम्र रहना, छोटे पर दया करना और अपने समान जो है उनसे मित्रता करना, प्रतिस्पर्धा नहीं कर, हृदय में प्रेम उछले अपने समान लोगों से और बड़े लोगों के प्रति आदर हो, झुक जाए और छोटे से स्नेह करे, प्यार करे, दया करे, तो इसको सील कहा जाए, जिसमें अभिमान का नामो निशान न हो। भगवान श्री राम में यह सील था। चित्रकूट में वे किसी भी ऋषि के सामने पहले प्रणाम करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है श्री राम पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का अर्थ होता है किसी से भेंट हुई तो पहले बोलते थे, ऐसे नहीं बहुत गंभीर हो जाना चाहिए कि वो पूछेगा ही तब बोलेंगे सबसे पहले बोल देते थे, आप कैसे हैं, सुख से है ना, भगवान का स्वभाव था पूर्वभाषी। यह एक गुण है, सील है, कुछ पूछते नहीं है, कोई वही पूछेगा, प्रणाम भी किया है और वही पूछता है कि आप कैसे हैं। शास्त्र की मर्यादा है कि जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है तो वह नहीं पूछेगा कुशल समाचार, जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसका कर्तव्य होता है वो पहले पूछे, लेकिन यह स्थिति हो कि प्रणाम भी किया कोई व्यक्ति और इसके बाद पूछे कि आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, क्या है, ये बुरा लगता है। सील जिसमें हो तो वह व्यक्ति पूछता है। इस तरह के अनेक उदाहरण है भगवान की लीलाओं में भरा पड़ा है, सुंदर सच्चरित और आर्ज लक्षण। आर्ज लक्षण का अर्थ निष्कपट, कोई दुराव नहीं और काम वासना नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। आप पढ़ेंगे रामायण में जब भगवान श्री राम जनकपुर गए तो गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी ने उनको पुष्प लेने के लिए भेजा, देव पूजन के लिए, भगवान की पूजा के लिए। तो दोनों भाई जनक जी की पुष्प वाटिका में गए फूल लेने के लिए। चूंकि विश्वामित्र जी एक विशिष्ट अतिथि थे अतः पूजा के लिए फूल लेने में उनको कोई बाधा नहीं थी। भारतवर्ष में आज भी ऐसी बात देखी जाती है, यदि भगवान की पूजा के लिए आप फूल मांगिए तो लोग दे देते हैं, फूल लगाए रहते हैं अपने घर की शोभा के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए मांगने पर दे देते। तो वह जो वाटिका थी वास्तव में वो स्त्रियों के लिए वाटिका थी, परंतु फूल लेने के लिए भगवान की पूजा के लिए, विष्णु भगवान की पूजा के लिए छूट थी, ठीक है जाकर कोई ला सकता। तो भगवान श्री राम गए अपने भाई लक्ष्मण के साथ और भगवान पुष्प वाटिका देख रहे थे, बहुत अच्छी थी फूलों की वाटिका और पुष्प चयन कर रहे थे, एक पात्र लिए थे उसमें चुन चुन करके फूल रख रहे। तेहियो सर सीता तहयाई गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान जिस समय पुष्प वाटिका में थे पुष्प चयन कर रहे थे उसी समय सीता जी भी आई उसमें। क्यों आ गई, माँ ने भेजा था, सुनैना जी ने भेजा था, क्या करने के लिए, गिरिजा जी का पूजन करने के। उसी पुष्प वाटिका में माता दुर्गा जी का मंदिर रहा होगा तो वहां पर माँ ने भेजा था कि जाओ आशीर्वाद मांगो। प्राय आज भी बच्चियों को सिखाया जाता है कि जाओ देवी को प्रणाम करो, देवता को प्रणाम करो और अपना मनोरथ व्यक्त करो, अपने लिए वर मांगो। आज भी यह प्रचलित है गांव में और मैंने तो देखा है गांव में आदि बद्री में वहां पर बच्चियां खोल करके मांग रही थी, ये भगवान का विग्रह था कि हमें सुंदर वर दीजिए, हमें सुंदर पति दीजिए, गुणवान पति दीजिए, ऐसे वो मांग रही थी। तो सीता जी को भेजा था मां ने कि जाओ माता को प्रणाम करो, पूजा करो, गिरिजा पूजन जननी पठाएं। तो गिरिजा जी की पूजा के लिए सीता जी भी अपने सखियों के साथ फूल चुनने लगी। तो फूल चुनते सुन चुनने पर हरे कृष्ण, भगवान श्री राम किंकिड़ी और नूपुर का शब्द सुने, सीता जी को देखे नहीं। तो किंकिड़ी मतलब करधनी, कमर में जो छोटी छोटी घंटियां बनी होती हैं बेल्ट में, तो उसकी आवाज और नूपुर की आवाज सुने। तो उस आवाज को सुनकर भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह तो किंकिड़ी और नूपुर की ऐसी ध्वनि है, लगता है कि कामदेव इस संसार में अपनी विजय पताका फहरा रहा, अपनी धुंध भी बजा रहा। अर्थात भगवान के कहने का आशय यह था कि ये जिस कन्या के पैर में होगा यह नूपुर, उसके प्रति मेरा चित्त आकृष्ट हो रहा है। और इसके बाद भगवान ने देख लिया सीता जी को लताओं के ओट में। तो भगवान का सहज पवित्र मन सीता जी में चला गया, क्योंकि सीता जी उनकी नित्य प्रेयसी हैं। कहने के लिए वो जनकपुर में जन्म ली हैं, भगवान से भेंट नहीं है, लेकिन हैं तो नित्य उनकी अंतरंगा शक्ति लादनी शक्ति हैं। तो भगवान सीता जी को देखे तो सीएमुख शशि भय नयन चकोरा, लक्ष्मण जी वहीं पर बगल में हैं और भगवान के नेत्र ऐसे सीता जी के मुख पर लग गए जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता है। तो सीता जी के प्रति भगवान का सहज पावन मन धावित हुआ और मन में यही इच्छा हुई कि यह लड़की मेरी पत्नी बन जाती तो बहुत अच्छा। भगवान के मन में यह बात आ गई। तो अपने सहज भाव को भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। हे प्रिय भाई, यही वह जनक महाराज की पुत्री है जिसके चलते धनुष यज्ञ किया गया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा। इसके शोभा को देख करके सहज पवित्र मेरा मन भी लोभ में पड़ रहा है, मेरी इच्छा हो रही है कि यह मेरी पत्नी बन जाती। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं अपने भाई से और इस प्रकार की बातें कहना यह उचित नहीं लगता है। दूसरा व्यक्ति रहता तो अपने मन के किसी भी भाव को छिपा लेता, नहीं इसे नहीं कहना है, एकांत में अब लव लेटर लिख करके भेज देंगे, लेकिन इसे कहना ठीक नहीं, तो ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी से बात करते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धर इनकाऊ, मोहियतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपनेहु पर नारी नहेरी। लक्ष्मण, मैं तो रघुवंशियों में सिरमौर हूं, लेकिन साधारण भी रघुवंशी यदि संसार में है तो रघुवंशियों का यह स्वभाव देखा गया है कि मन कभी भी कुपंथ पर नहीं जाता। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, कोई ट्रेनिंग द्वारा नहीं, किसी के सिखाने से नहीं, स्वाभाविक ही रघुवंशियों का मन कुपथ पर नहीं जा सकता है। कुपथ क्या है इस संदर्भ में, कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के प्रति मन धावित नहीं हो सकता है रघुवंशियों। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, जन्म के साथ ही उनका स्वभाव होता है। मन कुपंथ पग धरे न काऊ, काऊ का अर्थ है कश्चिदपि, कभी भी उनका मन किसी भी स्थिति में पराई स्त्री को नहीं जा सकता। मोहियत से प्रतीति मन केरी, जही सपने ऊपर नारी नहेरी। और मुझे तो अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा मन सपने में भी परनारी को नहीं देखा है। क्या बात है कि आज मेरा मन इस कन्या के प्रति जा रहा है, निश्चित है कि यह मेरी पत्नी बनेगी। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, किसी विषम परिस्थिति में महान पुरुषों का मन ही प्रमाण होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, जब दुष्यंत महाराज शकुंतला को देखे, शकुंतला एक ब्राह्मण के आश्रम में रहती थी, कर्ण मुनि के, कर्ण मुनि उस समय नहीं थे आश्रम में, तो दुष्यंत महाराज अपने मंत्रियों के साथ गए थे उस कन्या के अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर महाराज का मन उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ललच उठे। तो ब्राह्मण के आश्रम में रह रहे थे, तो महाराज दुष्यंत कहते हैं, मैं अपने मन के निर्णय से अनुमान करता हूँ, निश्चय करता हूँ कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, तुम निश्चित ही क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि नहीं चेतः पौरवाणम अधर्मे रमते क्वचित। वही भागवत का श्लोक है, पूर्ववंशियों का मन अधर्म में कभी भी नहीं रम सकता, मैं पूर्ववंशी हूँ। यदि तुम ब्राह्मणी होती या क्षत्रिय से भिन्न अन्य कन्या होती तो तुम में मेरा मन जा नहीं सकता था, मेरा मन प्रमाण। तब बाद में शकुंतला ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं कर्ण मुनि की पुत्री नहीं हूँ, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ और मेरी माँ मेनका ऐसा बताती है। इसके बाद गांधर्व विधि से विवाह किया दुष्यंत महाराज ने और उसे अपनी पत्नी के रूप में बाद में स्वीकार किया। तो उस विषम परिस्थिति में से देखकर हमारा मन जा रहा है, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह क्षत्रिय की कन्या है, तो मैं क्षत्रिय हूँ और यह क्षत्रिय की कन्या है, और वह भी क्षत्रिय की स्त्री यदि विवाहिता है तो सपने में भी मन नहीं जा सकता है उसके प्रति, नहीं चेतः पौरवाणम अधर्मे रमते क्वचित। तो भगवान श्री राम का आर्ज लक्षण देखिए, कहते हैं, मोहियति सय प्रतीति मन केरी जेहि सपनेहु पर नारी नहेरी। मेरे मन ने सपने में भी पर नारी को नहीं देखा है आज तक, जागृत की तो बात क्या है, प्रथम बार मेरे जीवन में हो रहा है कि इस कन्या के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुन भ्रात। पता नहीं क्या होगा, विधाता जानता है वह मेरा विवाह इस कन्या से लिखा है क्या क्या, लेकिन मेरे शुभ अंग फरक रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, फरक ही सुभद अंग सुन भ्राता। इसमें मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, तो इस संभावना की शुभ सूचना हमारे अंग फरक रहे हैं, ये इससे पता चलता है, दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी दृष्टि और जिनका मन दूसरे की स्त्री की ओर न जाता। उस संदर्भ में भगवान बोलते हैं, मंगन लहिन जिनके नरवर थोरे, ऐसे भगवान चालू करते हैं, जिनके लहिन रिपुरन पीठी नहीं पावही परती मन डीठ, मंगन लहिन जिनके नाही ते नरवर थोरे जगमाही, लहिन रिपुरन पीठी, अर्थात युद्ध में कभी जो पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता है ऐसा क्षत्रिय रत्न, इस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत कम है। तो शत्रु जिनके पीठ को नहीं देखे और दूसरे की स्त्री जिनके आंख और मन को कभी नहीं देख सके, अर्थहीन जिनका नाही, और भीख मांगने वाले जिनके मुख से नाही शब्द नहीं सुन पाए, ऐसे पुरुष इस संसार में बहुत कम है। ऐसे तो घर घर में है, प्रत्येक कार में बैठे हुए घूमते हैं, नहीं नहीं देंगे है ना, ऐसे तुरंत निकलता रहता है। पर कभी कभी ऐसे योग्य कैंडिडेट आते हैं मनुष्य के पास कि उस समय नहीं नहीं करना चाहिए, उस समय देना चाहिए, देने से ही शोभा होती है और बहुत बड़ा सुकृत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार के पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं, जिनके पीठ को शत्रु युद्ध भूमि में नहीं देख सके, जिनके आंख और मन को दूसरे की स्त्री नहीं पकड़ सकी, और जिनके मुख से ना ही शब्द नहीं मिला, नहीं निकला किसी याचक के मांगने पर। भगवान इस प्रकार से बात कर रहे हैं अपने भाई से, और अंत में वह बात बिल्कुल सत्य हुई, उनकी पत्नी बनी सीता जी। और सीता जी के अतिरिक्त भगवान कभी भी किसी भी स्त्री के तरफ सोचे भी नहीं। राजा चाहे तो अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन भगवान ने कभी नहीं सोचा। एक पत्नी व्रत धर, श्रील सुखदेव गोस्वामी नवे स्कंध में कहे हैं, भगवान एक पत्नी व्रतधारी। लोक में भी कहते हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी
तो एक नारी है तो वह व्यक्ति ब्रह्मचारी ही है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है लोगों में, एक नारी ब्रह्मचारी है। तो भगवान का जो चरित्र है इस विषय में वो अद्भुत है। इसको आर्य लक्षण कहते हैं। सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। और आगे वर्णन करते हैं, उपशिक्षित आत्मा ने, भगवान है उपशिक्षित आत्मा। तो उपशिक्षित आत्मा का अर्थ है कि भगवान का मन, यदि मन में और उनमें अंतर नहीं है, लेकिन एक मनुष्य को समझाने के लिए कहा जाता है कि वे उपशिक्षित आत्मा थी। भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान का शरीर बिल्कुल ट्रेंड था सत्य में लगने के लिए, गलत पथ पर जा ही नहीं सकता था। उनकी आंख गलत दृश्य नहीं देख सकती थी, कान नहीं सुन सकते थे, गलत बात नहीं बोल सकते थे, क्रोध नहीं करते थे। जिस व्यक्ति में क्रोध आ जाता है, काम लोभ आ जाता है, इसका अर्थ है कि उसको बहुत ट्रेनिंग नहीं दिया गया। सीखना चाहिए, कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, उसको भीतर ही पी जाना चाहिए, होठों पर नहीं लाना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जो व्यक्ति जितना ही क्रोध को जीत लेता है और काम को, वो उतना ही सुखी है। सकनो तिहाई वह यह सोढ़ प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम स युक्त स सुखी न रह। भगवान कह रहे हैं पांचवें अध्याय गीता में, शरीर छूटने से पहले जवानी अवस्था में जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वही युक्त है, वही सुखी है। तो भगवान श्री राम इस विषय में अभ्यस्त थे, कभी उनमें क्रोध नहीं देखा गया। जब भगवान समुद्र के तट पर आसन लगाकर बैठे और समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांगने लगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, एक बाण काफी है इसका पानी सुखाने के लिए, इस तरह से भी इसको हाथ जोड़ना ठीक नहीं। लेकिन भगवान 3 दिन उपवास किए और 3 दिन उपवास करके समुद्र देवता से मांगते रहे रास्ता। जब नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण दो धनुष बाण, दुष्ट लोग बिना दमन के नहीं मानते। तो वहीं पर भगवान के मुख से वाक्य निकला है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकार। भगवान ने बताया, इस श्लोक पर बहुत लोगों को चीड़ है कि ऐसा क्यों लिखा गया, और वो भी भगवान के मुख से हुआ है। इसका कुछ आशय है समझना चाहिए, कुछ कंट्रोल रखना चाहिए इन लोगों पर। जैसे ढोलक है, ढोलक को आप बजाने चलते हैं तो बिना ठोके बजाएंगे तो आवाज बढ़िया से नहीं देगा। बजाने वाले पहले उसको ठोकते हैं हाथ से या हथौड़ा से ठोकते हैं, तब आवाज निकलती है। तो आप ताड़न का अर्थ ही नहीं कि लाठी से ठाक ठाक पीटी है उसको, ताड़न का अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि पहले ढोल शब्द रखा गया। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अधिकारी मतलब जो के कैंडिडेट है, इनको थोड़ा सा डांट डपट कर रखना चाहिए, कहने का आशय है। ताड़न का अर्थ यह नहीं है कि पीटा जाएगा, पीटा ना अर्थ लेंगे तो ढोलक को भी तब पीटना पड़ेगा। तब ढोलक के लिए जैसे ठोकना अर्थ है, तो अन्य लोगों के लिए क्या अर्थ है समझना चाहिए। गंवार, गंवार व्यक्ति है, मूर्ख है, तो उसको थोड़ा डांट डपट करके रखना चाहिए, और कभी जरूरत पड़े तो एक तमाचा दिया जा सकता है, तब ठीक रहेगा, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। हाँ उसको थोड़ा इस तरह से रखना चाहिए। और शूद्र अनकल्चर्ड व्यक्ति है, तो उसको डट डपट करके और उस काम में सेवा में लगाना चाहिए। आप अपने ही घर में, अपने ही आश्रम में देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति होती है। तो मंगल आरती में नहीं उठने वाले भक्तों के यदि न डांटे हैं तो कभी नहीं उठेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आदत हो जाती है, प्रसाद रोकिए फिर भी कहीं ना कहीं किसी उपाय से खा लेते हैं, ऐसा देखा गया है ना। तो उनको जरा ठोक ठाक ठीक रखना चाहिए। ठोकने का मतलब बहुत डंडा छड़ी से मारे ना। और नारी, नारियों को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है कि विवाह के पहले उसे पिता के अधीन रहना चाहिए और विवाह के बाद पति के अधीन। जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी। एक जगह रामचरितमानस में आया है कि महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी। वो भी भगवान के मुख से कहलवाया गया है। भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मणी से, तो कहते हैं महावर्षा होने पर क्यारियां फूट जाती हैं और पानी बह जाता है, जैसे स्त्रियां स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी। कुछ भगवान ने साइकोलॉजी बनाया है, यह किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं किया जा रहा है, और इसके द्वारा यह भी समझना चाहिए कि समग्र स्त्रियों के लिए नहीं कही जा रही बात। स्त्रियों में भी बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियां हुई हैं जिनके सामने पुरुष कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम में पहला ज्ञान, पहली स्तुति महारानी कुंती के मुख से दी गई, और गोपियों ने जो भगवान के विषय में कहा है उसके मुकाबले तो कोई गीत है ही नहीं। तो एक जनरल आइडिया दी जा रही है, स्त्री को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और कदाचित ये वो अधीन नहीं रह रही है तो उसको थोड़ा डांट डपट करना चाहिए। और आज के युग में तो मार नहीं सकते, लेकिन एक आध गाली दे सकते हैं, कुछ ठीक रहेगी यही काफी है। ताड़न का ही अर्थ है धमकाना, डराना। लेकिन इसका अर्थ लोग लेते हैं बस, ताड़न माने डंडा उठाओ और ढोलक को चाहे किसी को मारे, कोई अर्थ है बताइए? समझना चाहिए। तो भगवान उस समय अपनी प्रिया के विरह में थे और समुद्र पर उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तो भगवान के लाल लाल आंख करते ही समुद्र का पानी उबलने लगा, बाण नहीं चलाना पड़ा, लगा कि समुद्र के सवार आने लगे, पानी ही जब उबलने लगा गर्म होकर के तब कौन रक्षा कर सकता है। तब समुद्र मूर्तिमान होकर के भगवान के चरणों में आकर गिर गया, हमारी रक्षा कीजिए, मैं तो मेरा निर्माण आपके पूर्वजों ने किया है, सागर महाराज के पुत्रों ने, इसीलिए उसे सागर कहते हैं। तुम्हारी मर्यादा है, हे प्रभु आपके प्रताप से मैं इसे, आगामी राजा लोग जब दिग्विजय करते हुए आएंगे साउथ इंडिया दक्षिण भारत, तो लोग देखेंगे आपकी महिमा की, भगवान ने सेतु बनाया था, 80 माइल चौड़ा और 800 माइल लंबा पुल है जिसमें कहीं पिलर नहीं लगा था, इस तरह का पुल भगवान ने बनाया है। एक बार एक जगह व्यक्ति बहस कर रहा था, ये कौन बड़ा काम है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, कितने जीव मरने लगे, क्यों गर्म कर दिए पानी मैं कहा तुम उस फेज को सुन रहे हो लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि दृष्टि में क्या शक्ति है भगवान की, कि समुद्र व्यापी जल खौलने लगा, उबलने लगा। संसार के सारे वैज्ञानिकों को बुलाओ और एक साथ एक लोटा पानी पर उनको दिखवाओ, गर्म हो जाएगा पानी, खूब क्रोध में हो करके और देखे पानी गर्म हो जाएगा, वही देखते देखते ठंडा हो जाएंगे, उनकी आंख अंधी हो जाएगी, पानी गर्म नहीं होगा। भगवान के आंखों में सर्व शक्ति है, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति बनती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान की इंद्रियों में प्रत्येक में सब इंद्रियों की शक्ति है, और वो भगवान की इंद्रियां ही विश्व की रचना करती हैं, पालती हैं और संहार करती हैं, कलयन्ति। भगवान की इंद्रियों में ये शक्ति है, वो दृष्टि से ही सृष्टि करते हैं, माया पर दृष्टिपात करते हैं और माया में शक्ति आ जाती है विश्व रचने की। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। जगन्ति का अर्थ ब्रह्मांडानी, संपूर्ण जगत को पश्यन्ति भगवान देखते हैं, पान्ति पालते हैं, उनकी इंद्रियां पालती हैं। अंगानी जस सकलेन्द्रिय प्रतिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति। कलयन्ति का अर्थ है संयम में करती है, नाश कर देती है। ये भगवान के अंगों की विशेषता है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान में क्रोध नहीं देखा गया, एक बार जरूरत पड़ गई क्रोध के लिए, इसीलिए भगवान ने क्रोध का आविष्कार किया, वहां आवश्यकता होती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है क्रोध की, वहां क्रोध करना चाहिए। लेकिन अपने को बिल्कुल बैलेंस में रख करके, ऐसा नहीं कि स्वयं ही पैजामा से बाहर हो जाए, तो ऐसे ही कहते हैं। वो कहते हो तो इतना गर्म हो गया कि पैजामा से बाहर हो गया, तो इतना विवेक नष्ट हो जाए कि आदमी नग्न हो जाए और अपनी शुद्धि ना रहे, ऐसा गर्म नहीं होना चाहिए। जो डांटने डपटने के लिए थोड़ा सा गर्म हुआ, इसके बाद इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब चाहे तब ठंडा हो जाए। तो भगवान अक्रोधी थे, उनमें क्रोध नहीं था, काम नहीं, लोभ नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे सूरज मंडल के भीतर अंधकार का प्रवेश संभव नहीं है, वैसे भगवान में माया के विकारों का प्रवेश संभव है ही नहीं। जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार, जहां कृष्ण वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो भगवान में सहज ऋजुता है, सारल्य, सहज शील व्रत, साधुवाद निकषणाय। साधुवाद का अर्थ है अच्छाई क्या है, अच्छाई की कसौटी है भगवान श्री राम। अब कसौटी का अर्थ समझते होंगे, एक कसौटी पत्थर होता है, उस पर सोने को कसा जाता है, सोने को रगड़ा जाता है, और प्योर सोना को पहले रगड़ करके उस पर रखते हैं लकीर, या उस समय रगड़ते हैं, और दूसरा जो सोना होता है उसको रगड़ करके देखते हैं। तो जब दोनों की लकीर बिल्कुल एक रंग की होती है तब समझते हैं हाँ ये खरा सोना है, असली सोना है। तो भगवान श्री राम कसौटी के समान है। किसी में अच्छाई देखना हो, शील स्वभाव अक्रोध गुरु पूजन, मतलब गुरु को कहते हैं साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, और आप ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का तो जितने भी ब्रह्मण्य लोग हैं जो ब्रह्म को या ब्राह्मण को वेद को मानते हैं, उनके आप उनमें आप सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मण्य देव। दो शब्द है बहुत प्रचलित शास्त्रों में, एक है ब्रह्म और दूसरा शब्द है माया। कुछ लोग केवल माया की वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो उनको संसार में कृपण कहा गया है, और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो कृपण। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माया की वस्तुओं पर लुब्ध नहीं होते हैं, ब्रह्म पर लुब्ध रहते, भगवान के रूप गुण लीला पर और भगवान के रूप गुण लीला आदि का वर्णन करने वाले वैदिक ग्रंथों पर लुब्ध रहते हैं, तो उनको ब्राह्मण कहा गया है। और ऐसे ब्राह्मणों से, वेद से या भगवान से जिसका प्रेम हो उसको ब्रह्मांड कहा, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड बहुत सुपीरियर मनुष्य होते हैं, माया की वस्तुओं में उनकी रुचि नहीं होती है, उनकी रुचि होती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ब्रह्म में रुचि होती है, भगवान कृष्ण में, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणों से, वेदों से तथा भगवान कृष्ण से जिनका प्रेम होता है उनको ब्रह्मांड्य कहते हैं। ऐसे ब्रह्मांडियों में शिरोमणि है भगवान श्री राम, ब्रह्मांड देव। तो ब्रह्म को मानते हैं, मनुष्य लीला से, मनुष्य लीला की दृष्टि से बात कही जा रही है। महापुरुषाय, भगवान श्री राम महापुरुष है। महापुरुष के कुछ लक्षण है, आजान उल्लंबित भुजा, बड़ी बड़ी आंखें, चरण में विशेष चिन्ह है। पुरुष तो सामान्य जीव ही कहे जाते हैं, मनुष्यों को भी पुरुष कहा जाता है, इन भगवान वास्तव में महापुरुष हैं, उनका सब कुछ विलक्षण है। तो भगवान श्री राम के अंग स्वभाव आदि सब कुछ विलक्षण है, महापुरुष है। महाराजाय ते नमः, और आज तक जितने भी राजा हुए हैं, प्रजा के पालक, उन सब में शिरोमणि है श्री राम, सब में शिरोमणि। और भगवान ने जो राज्य स्थापित किया उसकी कल्पना करके आज भी लोग तरसते हैं, राम राज चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लोग राम राज चाहते हैं विदाउट राम, यही कमी, पहले राम को तो लाओ सेंटर में, अपने आप राम राज आ जाएगा। अब तक मानव के इतिहास में ऐसा सुंदर साम्राज्य नहीं स्थापित हुआ।
भगवान श्री राम के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई किसी की। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जवानी में मर जाना, बचपन में मर जाना, बूढ़ा होकर के मरा जाता है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, वो किसी बच्चे के प्रणाम करने, कोई बच्चा उन्हें प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं, बूढ़ा के मर, ऐसे वो कहते हैं। तो हम लोगों को सुनने में बड़ा पटांग लगता है लेकिन उसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब दीर्घ जीवी बनो, वो चिरंजीवी शब्द का ही एक भाषांतर है, बूढ़ा होकर के मरो। मरना तो वही बेचारे, ये तो नहीं कह सकता कि अमर हो जाओ, ऐसा तो कहने की शब्द किसी में है नहीं। तो यह अभी एक आशीर्वाद देने की कला है, एक ढंग है, और हमेशा यही कहते हैं लड़कों को, कोई भी प्रणाम करता है तो कहते बूढ़ा होकर मरो, यही आशीर्वाद की शैली है। मैं किस बात पर कहा मैं भूल गया, लिंक राम राज में अकाल मृत्यु नहीं हुई, अल्प मृत्यु नहीं, कौन उपीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और सब बिना रोग के थे। और वर्णन किया जा रहा है कि दंड शब्द का प्रयोग भगवान के राज्य में नहीं था, दंड संहिता या दंडालय न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था, इसलिए दंड शब्द विदा हो गया था राज से। हाँ, एक जगह दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, दंड जतिन कर, दंड शब्द तब लोग याद करते थे जब सन्यासियों को देखते थे, अच्छा दंड वहां है, ऐसे वो दंड देखते नहीं, दंड जतिन कर, जतियों के हाथ में दंड शब्द बसता, और कहीं दंड नहीं था, किसी को दंड नहीं दिया जाता, दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, और भेद शब्द राम राज में कहीं नहीं था, किसी में किसी भी बात के लिए भेद नहीं था, वर्ग भेद, जाति भेद, यह भेद, वह भेद, ये भेद भावना निरस्त थी। भेद शब्द कहां था, नाचने गाने वालों के समाज में था, स्वर भेद, ताल भेद, राग भेद, भेद शब्द केवल वही था। तो दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, मांगे वारिद देह जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज में बादल मांगने पर पानी दे देते थे, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना पानी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अलग अलग किसान के खेत में अलग अलग दिन वर्षा होती थी। मैं कहा इस प्रकार के कृषक नहीं थे कि डिस्टर्ब करें बादल को, वो ठीक से काम करते थे समय से, ऐसा नहीं है कि अब इस खेत में आज वर्षा हुई तो कल दूसरे खेत में होगी, समय से वर्षा हो जाती थी, इसको मांगना कहते हैं। प्राय सभी किसान एक ही समय में मांगते थे, एक प्रकार की फसल होती है बोते हैं, मांगे बारिद दे ही जल, बारिद का अर्थ बारिद देने वाले, जल देने वाले, मेघ मांगने पर जल दे देते, इसका अर्थ है कि जितनी जरूरत पड़ती थी, जैसी कामना होती थी, वर्षा हो जाती। एक बार मैं कथा कह रहा था सागर में, तो कह दिया कि भगवान राम के राज्य में कोई क्राइम नहीं किया कभी भी, इसलिए वकीलों की कोई जरूरत नहीं थी, और कोई कभी बीमार नहीं हुआ, कोई रोग नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के पूछा, तब तो राम राज में वकील और डॉक्टर सब खाने बिना मर रहे होंगे। क्या कहा से कहा ये बात। अभी सुना अकाल मृत्यु नहीं, कुछ नहीं, सबको सब चीज सुना, तो वहां वकील की जरूरत ही क्या थी, वकील की जरूरत तो जब अंग्रेज आए तब कर दिए, इसके पहले भी नहीं थी। अंग्रेज अपनी सत्ता जमाने के लिए तीन काम चालू किए, कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज। तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षाएं जो दी जाती हैं, और इस प्रकार स्वतंत्र विद्यालय में नहीं, हम सिलेबस निश्चित करेंगे, हम पाठ्यक्रम निश्चित करेंगे, और कॉलेज में लड़के पढ़ेंगे तो वे अपने अनुसार लिखने के लिखे किताबें लिखे किसी भी विषय पर कल्पना करके ये करके वो करके तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं आज तक वही सब चल रहा है। अनास्था पैदा करने के लिए हिंदू संस्कृति में वैदिक संस्कृति में ये चाल चला गया। अच्छा कोई कहीं विवाद करता है झगड़ा करता है कलह करता है तो ग्राम पंचायत में उसको नहीं सुलटाया जाए। अंग्रेजों ने ये कहना चालू किया कि गांव के लोग पक्षपाती होते हैं किसी एक का पक्ष ले लेंगे इसलिए इन लोगों ने कोर्ट बनाया कोई भी बात हो तो लाओ हमारे पास हम फैसला देंगे। कौन फैसला देगा जो देखा नहीं है वो सुनेगा बात मिलाएगा इसके बाद जो भी फैसला देना होगा देगा। तो छोटी छोटी बात के लिए भी बस कोर्ट में पहुंचो और एक फैसला मिलने में 10 बरस 20 बरस हो जाता तब भी नहीं मिलता तो दूसरी पीढ़ी केस लड़ती और केस कब समाप्त होता है जब दोनों पार्टी का पैसा समाप्त हो चल समाप्त होना ही है। अंग्रेजों ने काउंसिल बनाया काउंसिल मतलब कोई विधान बनाना हो कोई रिसोल्यूशन बनाना हो तो कोई आदमी मीटिंग करके आपस में गांव में या शहर में समाज में नहीं बना सकता जो भी धार्मिक नियम चाहे सामाजिक नियम आर्थिक नियम हम बनाएंगे और काउंसिल होती थी तो वो लोग क्या चलाकी किए भारतीयों को शुरू में रखते थे हम इनसे राय लेंगे ये करेंगे वो करेंगे और अपना जो नियम बनाना था बना बना कर देने लगे इस प्रकार की बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वकील आदि भी ये तो पहले नहीं थे झगड़ा होता था और उसे बात की बात में गांव के लोग सलटा देते थे एक ही दिन में सारा मामला समाप्त हो जाता था परस्पर वांछा कल्प तरु करते थे और ठीक हो जाता था लेकिन इस तरह से बढ़ गई बात। तो भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन हो रहा है बहुत ही सुंदर शासन कई प्रकार से वर्णन किया गया कभी भी सूर्य में अधिक उष्मा नहीं निकली कहीं आग नहीं लगी कोई दरिद्र नहीं था कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं था बहुत सुंदर व्यवस्था क्या क्या वर्णन किया गया। तो यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं महाराज आ वास्तविक महाराज आप भगवान श्री राम के राजा भीराज अयोध्या के राजा भगवान श्री राम। आप कहीं भी सुनते हैं किसी के शासन का वर्णन हो कोई कहता है कि अरे ऐसा शासन होना चाहिए लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी ये शब्द है कि राम राज्य अद्भुत सुनते हैं तो कुछ मूर्ख तो कह देते हैं ये सब कल्पना किया गया है उनके दिमाग में तो बात बैठती नहीं है वैसा संभव ही नहीं हो सकता संभव क्यों नहीं हो सकता संभव हो सकता है। अब तो हम तो देखते हैं कि कुछ दिन के बाद कुछ वर्षों के बाद भारतवर्ष में भी लड़के ये नहीं जानेंगे कि पहले के लोग बैठ कर पेशाब करते थे। अगर कोई कहेगा कि पहले के लोग बैठ कर पेशाब करते थे तो कहेंगे ये सब कल्पना है ये हम नहीं मानते है ना। अभी भी 50% से अधिक लोगों की संख्या हो चुकी होगी खड़ा पेशाब करने वालों और स्थान भी ऐसे बनाए जाते हैं कि खड़ा ही पेशाब आप कर सकते हैं बैठ कर पेशाब करने की कोई सुविधा नहीं ये तो समाज कर रहा है। कई बातें वास्तव में कल्पना के सागर में डूब जाएंगी बाद में आदमी सोचेगा कि कल्पना है कल्पना है कल्पना कल्पना नहीं आज के लिए वो कल्पना लग रही है लेकिन एक दिन वह फैक्ट था भगवान का राज्य ऐसा था। एक ही गलती हुई थी उनके राज्य में जैसा लोग साधु लोग वर्णन करते हैं एक बार केवल एक क्राइम हुआ था वो क्या हुआ था एक कुत्ते को एक मंदिर के महंत ने थोड़ा मार दिया था तो कुत्ता भगवान राम के दरबार में आया कि हमको क्यों मारा गया बस एक ही फैसला देने के लिए केस आया भगवान के पास अब इसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था कि कुत्ता को कोई महंत मार दे तो क्या दंड देना चाहिए, और पहले से कोई कोड रहता है, कोई रूल रहता है तो दंड दिया जाता है। तो भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या दंड देना चाहते हो उसको, तो उसने कहा कि सरकार मैं यही दंड देना चाहता हूं कि किसी मंदिर का अध्यक्ष या महंत उसको बना दिया जाए, किसी मठ का, मंदिर का नहीं, मंदिर तो भगवान का होता है, मठ मैंने ऐसे ही सन्यासी चाहे कोई दूसरा, मठ का मालिक बना दिया जाए उसको। तो भगवान को आश्चर्य हो गया, पूछे अरे ये कौन दंड है, तो पुरस्कार है, नाम दिया जा रहा है। तो कुत्ता ने कहा कि सरकार मैं भी पहले महंत था मठ का, और महंत बहुत पक्षपात करते हैं, गलती करते हैं, विषमता करते हैं, तो उनको कुत्ता होना पड़ता है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इसको कुत्ते की जोनी मिले, इसलिए महंत बनाना चाहता हूं। तो यही केवल एक केस गया था भगवान राम के राज्य, बाकी कभी नहीं गया। महंतों को, अध्यक्षों को बहुत सावधान रहना चाहिए, और सबसे सावधानी की आवश्यकता है विषमता नहीं होनी चाहिए, सबको अपने परिवार का मान करके सबके साथ सम व्यवहार करें। जब विषमता आई कि अब वैष्णव लोग तो कुत्ते की जोनी में नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था। आगे हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विशुद्ध परब्रह्म है, जब तक विशुद्ध अनुभव मात्र में कम, और भगवान ज्ञान घन है, चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है श्री राम में, उनका आयुध, उनका वस्त्र, उनका आसन और सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है, और फिर श्री विग्रह के लिए तो कहना ही क्या। तब इस पर प्रश्न होता है कि भगवान ने तब फिर दशरथ जी के पुत्र क्यों बने, जब ये प्रकृति से पार है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो फिर वे दशरथ का पुत्र बनकर और अपनी प्रिया के विरह में इस तरह क्यों विलाप करते हुए घूमते रहते थे। प्रश्न बनता है, वैकुंठ में क्या भगवान को कोई कमी हो गई थी किसी स्त्री की, या जैसे तैसे किया करके हर रो रो कर खोज रहे, स्त्री के विरह में तो वह व्यक्ति रोता है जो आत्मा राम नहीं है, स्त्री राम है, स्त्री रमन में रमण कर रहा है, स्त्री से सुखी हो रहा है, या और वस्तुएं चाहिए, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारस त्विहमर्त शिक्षण रक्षो बधाय वनकेवलम्बी हो, भगवान का जो मनुष्यावतार होता है वह केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं, भगवान श्री राम रक्षो बधाय वनकेवलम्बी हो, सर्वसमर्थ भगवान है, संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे, तो राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, मर्त शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ, अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखा है, मनुष्यों को मर्त कहा जाता है और देवताओं को अमर्त कहा जाता है, मर्त का अर्थ है मरने योग्य, मर्त्य शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है, हूबहू मरने योग्य, मरण धर्म, मनुष्य के साथ क्षण क्षण में मृत्यु लगी हुई है, देवताओं के पास मृत्यु इतने देर तक नहीं रहती है, आती है मार देती है, लेकिन मनुष्यों के साथ हमेशा लगी रहती है, कहां मारेगी कोई ठीक नहीं, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, मनुष्य टूर में निकलता है, यात्रा में निकलता है, तब तक रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, या शरीर में ही कोई अंग फैल कर गया, हृदय फैल कर गया, या चाहे कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया, देवताओं के यहाँ ये सब चीज नहीं है, देवताओं के यहाँ कोई रोग नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब भागवत से मैं कह रहा हूं, पंचम स्कंध में सारी बातें लिखी गई, लेकिन मनुष्य लोक में तो अस्पताल चाहिए, यहाँ कारागृह चाहिए, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, दृश्य है जो इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य बड़ा दुख में है, मरण धर्म है। तो ऐसे मरण धर्म मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तब इस पर प्रश्न होता है, ठीक है, शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लिए, तो सीता के विरह में रो रो करके कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही सबसे बड़ी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इस संसार में स्त्री में आसक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से हाथ धो लेता है। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी में भी अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई वास्तविक रिलेशन नहीं है, धोखा है। तो जितना दिन रहना हो ठीक है, काम चला लिया, परिवार बसाया, बच्चों की सेवा हुई, लेकिन समय पर त्याग भी देना चाहिए, सीखना चाहिए त्याग मनुष्य को। और जो लोग अत्यधिक ममता करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं अपनी पत्नी में, उनकी वही दशा होती है जो राम की हुई। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, नहीं तो भगवान का और क्या घट गया था? जब वो वन में जाना चाहते थे तो सीता जाना चाहते थे, भगवान कहते थे मत जाओ मत जाओ। अगर नहीं गई होती तो भगवान सुखी रहते हैं। मैं मनुष्य दृष्टि से बोल रहा हूं, मनुष्यों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान में तो कोई दुख है नहीं। जो लोग स्त्री में आसक्त होते हैं तो बहुत दुख उनको होता है, ऐसा दुख और किसी कारण से नहीं होता। न तथास भवेद बंध मोहस चान्य प्रसंगत, भागवत में कहा गया है कि ऐसा बंधन और ऐसा अज्ञान मोह अन्य में आसक्ति से नहीं होता है जितना स्त्री में आसक्त होने से और स्त्री संगियों के संग में आसक्त होने से होता है। बहुत बड़ा बंधन लगता है, और जो बंधन है वो टूट जाते हैं, लगते हैं बंधन संसार में, लेकिन यह जो बंधन है स्त्री पुरुष का, ये दोनों ओर से होता है, इसीलिए टूटना कठिन होता है। अगर पुरुष मान लीजिए भगवान की भक्ति करे, विरक्त भी हो जाए तो स्त्री पकड़ी रहेगी उसको, अगर स्त्री विरक्त होती है तो पुरुष पकड़ा रहेगा उसको। जो वो पकड़ ऐसी है, मान लीजिए एक लूज किया तो एक पकड़ा है और एक लूज किया तो एक पकड़ा है, दोनों ओर से आसक्ति। लेकिन किसी ऐसी वस्तु में मान लीजिए हमारी आसक्ति यदि इस किताब में है तो हमारी आसक्ति टूटी तो टूट गई, इस किताब की कोई आसक्ति हम में नहीं है, यह मेरे पीछे नहीं घूमेगी किताब। तो स्त्री और पुरुष की आसक्ति संसार में बहुत प्रबल है, मरते दम तक यह आसक्ति नहीं जाती है, इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, स्नेह करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। यही शिक्षा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं, भगवान यह शिक्षा देने के लिए। अच्छा, दूसरी शिक्षा क्या है कि जो पत्नी सारा सुख छोड़ करके पति की सेवा कर रही है तो उस पर यदि कोई संकट आवे तो समुद्र पर पुल बांध करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह भी एक शिक्षा है। सीता अयोध्या का सुख छोड़ दी, महाराज दशरथ सुमन जी को कहे थे कि यदि राम न लौटे वन से तो सीता को लौटा लीजिएगा, यदि वो आएगी तो मैं जी जाऊंगा, मेरे प्राण का अवलंबन रह जाएगा। तो यहां वर्णन है कि सुमंत जी सीता जी को समझाने लगे, बेटी तुमको कोई वनवास नहीं दिया गया है और ये लोग तो पुरुष है, कष्ट सह लेंगे, लेकिन तुमसे हमारी विनय है, तुम चलो, तुम्हारे ससुर ने कहा है, दशरथ महाराज ने कहा है कि किसी तरह लौटा करके लाना, वे निश्चित मर जाएंगे यदि तुम नहीं लौटोगी। तो सीता जी कहती हैं कि देखिए हमारा धर्म है, हमें पति की सेवा करनी है और हमें कोई कष्ट नहीं, पिताजी से जाकर कह दीजिए, मतलब दशरथ महाराज से कह दीजिए कि सीता बिल्कुल सुखी है, भगवान के साथ रहकर पति के साथ रहकर मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरी सपने में भी चिंता न करें। तो सीता जी नहीं करें, कहते हैं कि पति देव के चरण कमल के अलावा सपने में भी मेरा मन कहीं सुखी नहीं हो सकता है, मैं वन में सुखी हूं। और चित्रकूट का वर्णन मैं नहीं किया, वहां वर्णन आया है कि सीता जी अयोध्या में जितना सुखी थी उससे 100 गुना सुख वे मान रही थी चित्रकूट में, और शायद अयोध्या में भगवान श्री राम से उनकी भेंट नहीं होती बहुत, भगवान राजकाज में रहते, लेकिन यहाँ क्षण क्षण में अपने प्रियतम के मुखारबिंद को देख करके उनकी सेवा करके डायरेक्ट जो सीता को सुख हो रहा था वो सुख अयोध्या में नहीं मिलता। सीता जी अनुभव कर रहे थे कि जो मुनियों की पत्नियां थीं, जैसे अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, तो वे लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वही सास है इनकी, और वे मुनि लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि वही ससुर है। इतना सुख मिलता था, इतना स्नेह देते थे वो। तो सपने में भी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के विषय में नहीं सोचते थे, भूल गए पूरा पूरा। अयोध्या का स्मरण भगवान राम करते थे, जब जब राम अवध शुद्धिकरण तब तब बारी विलोचन भरण, भगवान जब जब अपने पिताजी की याद करते थे और भरत की, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी कभी याद नहीं करते थे, वे तृप्त थे, सुखी थे। तो कहने का आशय है कि जो स्त्री मन कर्म और वचन से पति के अनुरक्त है, सेवा कर रही है, तो उस स्त्री का सब तरह से पोषण करना धर्म है। यदि वो संकट में पड़ जाती है तो अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। दो शिक्षा दी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बात लिखे है भगवान ने शिक्षा दिया, तो अनाशक्ति की भी शिक्षा दिया और पत्नी के पालन की भी शिक्षा दिया भगवान ने अपने इस आचरण द्वारा। दोनों शिक्षा वास्तव में सत्य बात। मर्त्यावतारस्त विमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय यवन केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ, असली उद्देश्य यही है। अपने आचरण से भगवान ने सिखाया, बचपन से लेकर के अपने लीला में अपने धाम में जाने तक भगवान के जो भी आचरण है वो अद्भुत है, सीखने लायक। कई बातें सीखने लायक है, जैसे लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं, भरत जी सिखा रहे हैं। भरत जी से सीखना चाहिए भाई से प्रेम, जब भाइयों में प्रेम रहता है तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं भाई ऐसन दुश्मन है, भाई ऐसन हित कोई ना होता, ऐसा कहते हैं। भाई यदि साथ देता है तो सफलता चरण चूमती, भाई यदि विरुद्ध हो जाए तो फिर कहीं सुख नहीं। ये आचरण से सीखना चाहिए, और उस समय यह रामायण लिखा गया रामचरितमानस, जिस समय कुछ भाइयों के मतभेद के कारण विदेशी आक्रमण हो रहा था हमारे देश में। जयचंद और पृथ्वी राज के विषय में आप लोगों ने कुछ सुना होगा, जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज को हराइए, देसावा में तुरु का बोलावले जय चंदावा, भारतेंदु हरिश्चंद जी ने पद लिखा, अरे जयचंद इस देश में तुम तुरुक को बुलाए, निमंत्रण दिया था। तो भाइयों में मतभेद होने के कारण भारतीय राजा परास्त हो गए, नहीं तो कभी परास्त नहीं हुए होते। यह एक शिक्षा दी जाती है, जैसे देश स्तर की बात है तो उसी तरह से परिवार में भी यदि भाई से प्रेम है तो बहुत सुख रहता है। यह एक बहुत एसेंशियल शिक्षा है, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए जितेंद्रियता। वे सीता को हमेशा माँ कहते थे, कभी भी भाभी नहीं कहे, और उस समय लक्ष्मण जी के चरित्र का पर्दाफाश होता है। जिस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे वे सीता को खोजते जा रहे थे, झुरमुटों में कंदरा में रोते हुए जा रहे थे, तो सुग्रीव एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे थे, बाली ने उनको मारकर घर से निकाल दिया था। तो उस स्थान पर सुग्रीव बैठे थे जहां बाली नहीं जाता था, एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि यहां बाली आएगा तो मर जाएगा, तो कुछ खास क्षेत्र में बाली नहीं जाता था, तो सुग्रीव जी उसी क्षेत्र में रहते थे। तो सुग्रीव ने देखा कि दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर के हाथ में और कुछ खोज रहे, पर्वत शिखर से देखा और हनुमान जी साथ में बैठे थे और भी बालक थे, तो ऐसे ही भय बना रहता था बाली का, यहाँ सांप बस आवत नहीं तदपि सभीत रहूं मन में। तो जब सुग्रीव देखे कि दो व्यक्ति खोज रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या जानते हैं कि सीता को खोज रहे हैं, उनका धक धक कलेजा करने लगा। वो सोचे कि बाली ने कोई भेजा है वीर और हमको खोज रहे, और समझ गए कि बहुत तेजस्वी हैं, धनुष बाण लिए हैं, तपसी के भेष में हैं लेकिन वीर हैं, धनुष बाण लिए। तो सुग्रीव भाग गए और हनुमान जी को कहे कि सुग्रीव, हनुमान जी मैं छिप जाता हूं यहां पर और आप जरा पता लगाइए कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके गए भगवान के पास। तो वहां जाने के पास जाने के बाद पता लगा कि अरे ये तो भगवान है, वो समझ गए बाद में। हनुमान जी ने पूछा है कि आप इस तरह से कठिन भूमि कोमल पथगामी कवन हेत बिसरहु वंशान। तो भगवान ने कहा कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में आए थे और एक दिन मैं हरिण मारने गया तो हमारी पत्नी को कोई ले, और कुछ कुछ पता लगा है हमें जटायु जी से कि रावण ले गया, और कहां ले गया किधर ले गया कोई पता नहीं, अपने राजधानी में ले गया कि कहीं दूसरी जगह विदेश में कर दिया क्या पता है। इस तरह से भगवान अपना दुख कहने लगे। तो हनुमान जी तो समझ गए भगवान है, तो वो कहते हैं आप चलिए किष्किंधा के पास और वहां एक सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, कुछ उनको जानकारी है। तो भगवान कहे ठीक है चलिए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर चढ़ा लिया और उड़ करके चले, पवन पुत्र हैं तो उड़ने में क्या दिक्कत है भगवान से भी अधिक वेग से लेकर के पहुंच गए ऊपर। जब हनुमान जी लेकर जा रहे थे राम लक्ष्मण को कंधे पर, तब और बानर और सुग्रीव आने लगे धीरे धीरे जहां बैठे थे। तो आए, फिर परिचय हुआ, भगवान श्री राम से पूछे सुग्रीव जी आप कैसे कौन है। तो भगवान ने पूछा सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी कहते हैं जौन तोर गति तौन मोर गति, जो आपकी दशा है वही मेरी दशा है, मेरा भाई मेरा राज छीन लिया है, मेरी पत्नी तक छीन लिया है और मुझे निकाल दिया है, मैं यहाँ भय बस रहता हूँ, यहाँ वो नहीं आता है लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कब क्या करेगा, ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री राम जब पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में दुंदुभी नाम का एक असुर आया था राक्षस, वो ललकारा चुनौती दिया लड़ने के लिए, तो बाली और हम दोनों भाई उसका पीछा किए, वो गुफा में घुस गया लड़ते लड़ते। तब बाली ने कहा कि तुम गुफा में मत घुसो, मैं घुसता हूं, तुम बाहर प्रतीक्षा करना, उसको मारकर मैं आऊंगा। तो बाली ने कहा था कि दो चार दिन मेरी प्रतीक्षा करना, तो मैं खड़ा रहा और बाद में गुफा से रक्त की धारा निकली और एक महीना बीत गया, मास दिवस तह रहा हूं खड़ा, मैं एक महीना रह गया और एक महीने के बाद देखा कि खून की धारा निकली, तो मैं सोचा कि बाली को मार दिया दुंदुभी, और मैं तब गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर पर्वत का शिखर लगा दिया कि उधर से निकल कर आने ना पाए, और वास्तविक बात थी कि बाली ने मारा था दुंदुभी को, लेकिन बेचारे सुग्रीव निर्दोष थे, वो समझे कि बाली मारे गए अब वो आएगा तो हम लोगों को मारेगा, इसीलिए बहुत बड़ा शिला रख दी। तो बाली जब उस दुंदुभी नामक असुर को मारा, राक्षस को मारा और देखा कि ये द्वार बंद किया, तो बाली के मन में दुर्भावना हो गई कि ये जान गया कि बाली मर गया है, अतः मेरी औरत को रखना चाहता है और मेरा धन छीनना चाहता है सुग्रीव। तो आया बस सीधे, कुछ पूछा भी नहीं, कहा कि तुम हमको मारना चाहते थे, शिला से तुम गुफा का द्वार बंद कर दिया था, बहुत मारा बहुत पिटाई किया और इनकी स्त्री को भी छीन लिया और इनका राज धन घर सब छीन लिया भगा दिया, ये हनुमान जी ये सुग्रीव जी कहे भगवान से। तो सुग्रीव जी पूछे कि आप कैसे आए, तो भगवान कहते हैं मेरी भी वही दशा है, यद्यपि हमारा भाई मारा नहीं है लेकिन हमारी स्त्री को दूसरा कोई ले गया। तो आपकी स्त्री को तो आपका भाई छीन लिया है लेकिन हमारी स्त्री को कोई चुरा कर ले गया, हमारा राज भी चला गया। सवर्गे परम प्रीति, तो कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव जी ने कहा, तो भगवान ने भी कहा कि हाँ मैं भी आपकी सहायता करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। तो सुग्रीव को बहुत खुशी हुई, यदि वो नहीं समझेगा बाली तो मैं उसका वध कर दूंगा, आपका राज लौटा दूंगा, आपकी पत्नी लौटा दूंगा। संधि हुई, वहां हनुमान जी आग जलाए, यज्ञ किए, अग्नि देवता साक्षी बने दोनों की मैत्री का। मित्रता है भगवान में और बानर राज सुग्रीव जी में। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, प्रयास करूंगा। एक दिन मैं पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था तो एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी आकाश में, कोई व्यक्ति उसका हरण करके जा रहा था। ये नहीं कह रहे कि सीता, वो क्या जानते हैं सीता कौन है क्या है, लेकिन विलाप से समझ रहे थे कोई स्त्री है विलाप करती हुई जा रही है। तो हम बानरों को देखकर उसने अपना आंचल फाड़ा और उस आंचल में अपना कुछ गहना निकाल करके और उसकी पोटली बांध करके वो फेंकी हम लोगों के पास। तो सीता जी बहुत अभिज्ञ व्यक्ति थी, वे गहना को झुरमुट पर फेंकी थी, पत्थर पर नहीं, झाड़ियों पर फेंकी थी कि टूटने न पाए, बानरों को दिखा करके रोती हुई जा रही थी। और इसके बाद उद्देश्य मिले, पता मिले हमारे पतिदेव को, कदाचित इधर आएंगे तो एक पता मिलेगा। तो सीता जी ने इस तरह से गहना को फेंक दिया झाड़ी पर, तो उसमें वे कान का कुंडल, हाथ की चूड़ियां कंकर सोने की और पैर के नूपुर ये फेंकी थी। तो सुग्रीव जी उसको देखे, तो जैसे तैसे देखे, और बानरों के लिए उसका क्या उपयोग था, वो लेकर के रख दिए थे गुफा में बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री का मैं गहना रखा हूं, आप देखिए क्या वो सीता का है। तो सुग्रीव जी गए गुफा में, उसको लाए, भगवान राम देखे तो भगवान राम तो पहचान गए कि ये सीता का है। तो वे पहचानने के लिए, संदेह मिटाने के लिए लक्ष्मण को दिखा रहे हैं, भगवान दिखाने लगे कि लक्ष्मण ये नुपुर सीता का है, ये कुंडल सीता का है और चूड़ी सीता की है। लक्ष्मण जी का एक अद्भुत वाक्य है वाल्मीकि रामायण में, वो कहते हैं कि केयूरम ना भिजानान, न जाने च कुंडल है, ऐसे श्लोक। मैं केयूर को, मैं कंकड़ को नहीं पहचान रहा किसका है, कुंडल भी मेरे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन नूपुरों चौ परिचिनों में नित्यम पादा भी वंदना था। मैं माता सीता जी के चरणों की रोज वंदना करता था तो नूपुर पहचान रहा हूं वही है, चरण पर ही मैं देखा हूं आज तक, हाथ पर और मुंह पर नहीं, कान पर नहीं देखा। आज के मनुष्य की कल्पना की बाहर की बात, 14 वर्ष तक जो लड़का अपनी भाभी के साथ रहा है उसके चरण पर केवल देखा, मैं नहीं पहचान रहा हूं। मैं प्रतिदिन प्रणाम करता था इसलिए नूपुर को पहचान रहा हूं, यह हमारा गौरव रहा है हमारी प्राचीन संस्कृति का। भगवान इस तरह इस जगत में अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं। क्या संसार में कोई व्यक्ति मन से भी कभी ऐसी बात सोच सकता है कि ऐसे लोग होते होंगे पहले, जो कभी सीता जी के हाथ तक पर अंगुली पर नहीं देखे थे लक्ष्मण जी, और मुख पर तो देखने की बात ही क्या, चरण को देखते थे वंदना करते समय। प्रतिदिन सवेरे स्नान करके वे सीता जी को साष्टांग प्रणाम करते थे, मां कहते थे। तो इस प्रकार का व्यवहार है। तो भगवान का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता, अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक शिक्षाएं। और हम मनुष्यों का एक कर्तव्य है कि हम उन शिक्षाओं को गिने, समझें और यथाशक्ति अपने आचरण में उतारें। यद्यपि समय बहुत बदल गया है, बहुत कठिनाई है, बहुत बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जान बुझ करके क्यों अपने को दवानल में झोंके, टीवी ऑन करके और नाचती हुई लड़कियों को देखते रहना, इससे तो अपने को बचा सकते हैं ना। इतना भी नहीं कोई कर सकता, वो क्या व्यक्ति सोचेगा जीवन में उन्नति, क्या उन्नति करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। चित्त पर संस्कार बनता जाता है, बनता जाता है, और व्यक्ति सोचे कि हम शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, और शुद्धि का सारा कारण उपस्थित करके और शुद्ध रहना चाहिए, कैसे शुद्ध हो सकता है। देखने का भी एक अभ्यास होता है, कहां देखें, कैसे देखें, तो इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। जब भरत जी के द्वारा भाई से प्रेम की शिक्षा मिलती है, तो भगवान से प्रेम उनका था ये तो एक अलग बात है, केवल भाई की दृष्टि से भी देखिए तो अद्भुत है। जब भरत जी को पता लगा कि भगवान वन में चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो रोते बिलखते अयोध्या आए, बारंबार मूर्छित होकर गिर जाते थे, और आने पर अयोध्या में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, उसमें भरत जी को प्रस्ताव रखा गया कि आप राजा बनिए, कोई राजा नहीं है, अयोध्या के राज्य को संभालिए। तो यह प्रस्ताव देने वाले गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने आपको राज दिया है, इसलिए आपका राज्याभिषेक हो जाता है और इसके बाद आप प्रजा का पालन कीजिए। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे राज दिया जाएगा उसी दिन यह पृथ्वी रसातल चली जाएगी, ये मेरा राज्य नहीं, मैं कदापि नहीं ले सकता। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया, भरत जी कहते हैं नहीं, पिताजी ने वनवास नहीं दिया है, कैकेयी ने दिया है, वो मां नहीं कहे, अब उसी समय से मां कहना छोड़ दिए, जीवन भर कैकेयी को मां नहीं कहे, कैकेयी ने उनको वनवास दिया है, कैकेयी का क्या अधिकार है राज्य पर, मैं कभी राज नहीं ले सकता हूं, मेरा तो हृदय जल रहा है और बिना रघुनाथ के चरण कमल का दर्शन किए मुझे संतोष नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा चित्रकूट और उनको मना करके लाऊंगा, उनको राज्य आसन पर बैठा करके तब मेरे हृदय की जलन निकलेगी, मैं नहीं राजा बन सकता। फिर कौशल्या जी को कहा गया कि आप समझाइए, तो कौशल्या समझा रही है राम की माता कि बेटा धर्म के अनुसार तुम राजा हो, पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है, बड़ा भाई होने से क्या हुआ। कौशल्या जी कहती तो जनरल रूल है कि बड़ा भाई राजा होता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि पिता जिसको राज देता है वही राज्य का अधिकारी होता है, जैसे जजाति महाराज ने अपने छोटे पुत्र को राज्य दिया, पुरु को, जदु महाराज को नहीं दिया, तो पुरु महाराज राजा हुए। और कभी कभी अपने पिता की या माता की अनुचित आज्ञा को भी मानना चाहिए। कौशल्या जी कहती है अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पतियान। अपने माता पिता के आज्ञा को यह उचित है अनुचित है इसका विचार न करके भी कोई पालन करता है तो अमर पति देवराज इंद्र के भवन में बास पाता है, मतलब उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी अनुचित आज्ञा का भी पालन किया जाता है तो माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी तर्क देते हैं भरत जी को, कहते हैं देखो परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मात वेद सब साखी। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने माँ का वध कर दिए, सारा लोक जानता है वेद में यह बात, लेकिन क्या परशुराम पर कोई दोष हुआ, नहीं हुआ, क्या यह आज्ञा मानने लायक थी। जब पहले किसी को समझाया जाता था तो पूर्व के इतिहास द्वारा समझाया जाता था, ऐसा पूर्व में हो चुका है, ऐसा हो चुका है, और क्या गलती थी रेणुका की, परशुराम जी की माता की, पानी भरने गई थी नदी में और देवलोक से आए हुए चित्ररथ को देख रही थी, रथ को देख रही थी, उसी में बेचारी को देर हो गई, और इधर हवन की बेला थी, इसको अपने पति के लिए जमदग्नि जी के लिए घी देना था, लकड़ी देना था, पानी देना था, देखने लगी स्वर्ग से आए हुए देवता थे बेचारी, देखने लगी आश्चर्य में, और कुछ देर के बाद उसे स्मरण आया कि पति के हवन का समय हुआ है, मुझे पानी देना चाहिए, आसन देना चाहिए, तो आई पानी भर कर, डरी हुई थी, सहमी थी बेचारी, सेवा कर रही थी अपने पति की, पतिव्रता स्त्री थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सती, आप भागवत पढ़ेंगे ध्यान से, तो कहते हैं सती स्त्री थी, पतिव्रता थी, थोड़ी सी देर हो गई आने में, तब अपने जोग बल से ध्यान में देखे कि ये रथ देखने में लगी हुई थी, एयरप्लेन देख रही थी स्वर्ग का और देवताओं को देख रही थी। इतने पर उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आया तो जमदग्नि जी कहते अपने पुत्रों से, इस पापनी का मस्तक काटो अभी। वाह रे हस्बैंड जी, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। पहले बेचारी ने कितनी सेवा किया है इसका कोई ध्यान नहीं रहा, लेकिन थे बहुत तेजस्वी पति, साधारण नहीं थे। और बच्चों ने साफ कह दिया, सयाने हो गए थे बड़े बड़े पुत्र, बस परशुराम जी सबसे छोटा बेटा था। तो भी कैसे अपने माँ का वध कर दो बताइए, जिस माँ ने जन्म दिया, छाती का दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कोई कहे मारने के लिए, भले ही बाप हो तो इससे क्या, माँ को मार देंगे। उन लोगों ने साफ कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे। तब छोटे पुत्र को जमदग्नि जी ने कहा परशुराम जी को, बेटा इस पापनी को भी मारो और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले अपने भाइयों को भी मारो, इन दुष्टों को भी मारो। अद्भुत अद्भुत आज्ञा हुई और परशुराम जी आज्ञा पालक पुत्र रथ में, वे उठाए कुल्हाड़ी, माँ का वध कर दिए और भाइयों का भी वध कर दिया। उसे एक एक बार तो मारना था, उनका मस्तक कट कट करके गिर गया। वहां सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनकर महाराज परीक्षित चकित हो गए, अरे क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सांत्वना देते हुए, अपने पिता के तप का प्रभाव जान करके ही भगवान परशुराम मारे अपने माँ को। तप का प्रभाव मतलब जानते थे भगवान परशुराम जी के पिताजी प्रसन्न होंगे हमारी आज्ञा पालन से और कहेंगे वर मांगो, तो मैं वर मांगूंगा कि मेरी माँ जी जाए, मेरे भाई जी जाए, यह जान करके ही उन्होंने वध किया। तो वध कर दिया। इसके बाद जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे बेटा तुम नहीं पालन करने योग्य आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। परशुराम जी ने वर मांगा कि पिताजी मैं यही वर मांगता हूं कि मेरी माँ और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उनके गर्दन कटने का कोई निशान नहीं रहना चाहिए और कभी भी जीवन में उनको याद न आवे कि मैं इनको मारा था। बधे च अस्मृति, ऐसा भागवत में लिखा गया है, नहीं तो कभी भी आगे चल करके याद आएगा तो भाई सोचेगा भाई परशुराम मामा ये हमको मारा था, ऐसे सोचेंगे, बहुत भेद पड़ेगा। तो पिताजी से उन्होंने ये वर मांगा। एक बार तो बच्चों को याद था, चाहे माँ को याद था ना कि वो कह रहे थे मरने के लिए पति, तो बच्चे नहीं मारे। तो परशुराम जब मारे होंगे वो कुल्हाड़ी लेकर के, तो गर्दन के पास आया होगा उसमें तो देखते ही होंगे, लेकिन ये सब मारने मरने की आज्ञा और दृश्य सब विस्मृत हो गया ऋषि के वरदान से। उनको कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था, रेणुका को कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था जीवन भर। भगवान की एक अद्भुत शक्ति, और सब बातें याद आती, ये बात याद नहीं आएगी। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में थे तो कोई याद आ रही है, भूल गए ना, नहीं याद आती। तो भगवान की व्यवस्था से यदि एक दृश्य को भूल जाए तो कौन बड़ा आश्चर्य। जो कुछ भी हो वे जी गए ठीक है, लेकिन क्या ये आज्ञा पालन करने योग्य थे। और इसीलिए सब लोग जमदग्नि नहीं है, अतः ऐसी आज्ञा कभी नहीं देनी चाहिए। वो तो जमदग्नि थे, वो तो दिला दी अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मार सकता है जिला नहीं सकता। तो गुरु वशिष्ठ जी और कौशल्या जी भरत जी को कह रहे हैं, देखो मां तक का वध कर दिया परशुराम जी ने, लेकिन उन पर कोई लांछन नहीं लगा। और तनय जजाति ही जौवन दयव पितु आज्ञा अजस न भयव। पूर्व महाराज अपने पिता को अपनी जवानी दे दिए और उसी जवानी से, उसी सुंदर शरीर से उनके पिताजी उनके मां के साथ रहते थे, लेकिन क्या कभी भी कोई व्यक्ति
कहता है कि पुरु ने गलती किया, नहीं, प्रशंसा होती। पितु आज्ञा अघ अजस न भयम, न तो पाप लगा पुरु पर और न तो अपजस हुआ, अपकीर्ति हुई, बल्कि प्रशंसा हुई और बाद में इन्हें अखंड भूमंडल का राज्य भी मिला। पिता को जवानी देने के कारण पुरु महाराज को अखंड राज मिला और जदु बड़े थे लेकिन खंड राज मिला दक्षिण भारत का थोड़ा सा। भूमंडल से सर्व से पूर्व और हरतमम विशान, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखंड भूमंडल का राज्य पुरु को मिला और इसी पुरु महाराज के वंश में दुष्यंत और भरत हुए और बाद में युधिष्ठिर महाराज, जबकि कृष्ण उनके दास जैसे रहते थे, जबकि जदु महाराज के वंश में उत्पन्न हुए, साक्षात भगवान लेकिन जो युधिष्ठिर के दास बनकर रहते थे, वास्तव में वंश परंपरा से पुरु के वंश में थे युधिष्ठिर, इसलिए वे लोग राजा बने। तो अब अजस भी नहीं हुआ, पाप भी नहीं हुआ, सब जगह प्रशंसा होती है। इस तरह से पुत्र यद्यपि तुम्हें लग रहा है कि आज्ञा मानने लायक नहीं है लेकिन पिता ने आज्ञा दिया है इसलिए तुम राज्य करो, और वन में जाते जाते राम ने भी आज्ञा दिया है कि भरत को समझाकर कहना कि वो राज्य करे, लेकिन भरत जी तो नहीं, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए, मेरे हृदय में आग लगी है, बिना भगवान से भेंट किए मेरी जलन नहीं कर सकती, वो तिरस्कार कर दिए, राज्य अभिषेक की सारी सामग्रियां प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं राजा बन सकता, और उन्होंने कहा कल मैं जाऊंगा चित्रकूट, पता लग गया था कि भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, तो मैं जाऊंगा भगवान को मना करके लाऊंगा। जब भरत जी जाने के लिए तैयार हुए तो अयोध्या के सभी लोग तैयार हो गए, जनकपुर से महाराज जनक को पता लगा तो वे भी चित्रकूट पहुंचने के लिए तैयार हो गए, बहुत बड़ा समाज लेकर भरत जी गए, बहुत बड़ा समाज, और जाकर कई दिन सभाएं होती थी, कभी जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी आपस में बात करते थे, कभी कोई बात करते हैं कैसे राम से कहा जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत अच्छा वर्णन है, तो जब अंतिम सभा जुटी भगवान श्री राम के सामने भरत जी रो रोकर कहने लगे कि राज आपका है, मैं राज्य नहीं लूंगा, प्रजा सारी दुखी है, आप चलिए और हम और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे आपके बदले लक्ष्मण के बदले, लेकिन आप अयोध्या लौट जाइए। भगवान ने एक बात कहा भरत जी से कि देखो भरत, धर्म के पालन में छल कपट नहीं करना चाहिए, पिताजी का वचन और पिताजी में कोई भेद नहीं है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि वन में जाओ, लेकिन कैकेयी को मेरी माँ को कहा था ना कि मैं तुमको वर दूंगा, तो उसके मन में जो आया उसने वर मांगा, तो पिताजी यदि सत्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए तो क्या मैं अपने पिता के धर्म को पूरा न करूं, कोई गलती पिता से हो जाती है तो पुत्र उसको पूरा करता है। तो भगवान वहां पर बहुत नीति बोले हैं वेद से कि देखो इसीलिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है, पिता से कोई भूल चूक हो गई हो तो पुत्र तार देता है पिता को, और इसी से पुत्र नाम की निष्पत्ति हुई है, पुत्र शब्द की, पुत्र एक पुत्र नाम का नरक है और उससे त्र जो त्राण कर देता है रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गारंटी ले ले कि हम अपने कर्म से पार हो जाएंगे, हमें पुत्र की सहायता नहीं चाहिए और की सहायता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, भूल चूक हो ही जाती है, और बाद में पुत्र जब श्राद्ध करता है या शुभ कर्म कोई और करता है, भागवत सुनता है, भगवान का भजन करता है, तो पिता की गलती सब माफ कर दी जाती है और उसकी उन्नति होती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं, भगवान नृसिंहदेव जब जाने के लिए प्रस्तुत थे तो प्रहलाद महाराज से कहे कि वर मांगो, प्रहलाद महाराज अंतिम में वर मांगे कि हे नाथ, हमारे पिताजी आपके साथ बैर किए, आपको बहुत दुर्वचन बोले और मैं आपका भक्त था, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, परंतु आप करुणा निधान हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे पिताजी नरक में न गिरे, उनकी अधोगति न। तो भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारे पिता की क्या बात है, तुम इस वंश में जन्म लिए हो इसलिए तुम्हारे वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए। तो ये प्रहलाद महाराज का अनुभव है। हिरण्यकश्यप जैसे पापी को भी उतार दिए थे। हिरण्यकश्यप भगवान के अंग संग से, नख स्पर्श से और रात दिन उनके चिंतन से मुक्त होने की योग्यता रखता ही था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज सोचते थे कि मैं बहुत बड़ी अधोगति होगी, भगवान से बैर करना, भगवान के भक्त को सताना, देवताओं को दुख देना। तो भगवान ने यह कह रहे, आज उन्होंने कहा कि मदंग स्पर्श, मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है इसलिए उसकी शुभ गति होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस वंश में जन्म लिए हो इसलिए 21 पीढ़ी के लोग तर गए। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि 21 पीढ़ी कौन, अभी तो कुछ ही पीढ़ी हुआ था उनका। तो भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी अदिति, दीति, तो दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए थे। कितनी पीढ़ी हुई, उसका अर्थ होता है आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में भी पीढ़ी और नाना के भी वंश के लोग, कई तरह से चतुर्दिक प्रभाव होता है। एक लक्षण कह देगा 21 पीढ़ी में, तो इसे ज्यादा ही तरेंगे, कहने का भाव ये है। कभी कभी भक्त पूछते हैं, हम भक्त हुए हैं तो क्या हमारे पीढ़ी के लोग तरेंगे? मैं कहा जितना परसेंटेज भक्ति है उतना तो तरेंगे। अरे 21 में ही तरेंगे, एक पीढ़ी भी दो पीढ़ी तो तरेंगे। और देखा गया है प्रकट पीढ़ी तर जाती है। हम देखते हैं कोई पत्नी भक्त हो जाती है तो धीरे धीरे पति भी पीछे पीछे मंदिर में आ जाते हैं। ये पीढ़ी तरी कि नहीं तरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और प्राय बच्चे कहाँ करते हैं, जो नए भक्त बनते हैं कहते हमारे पिताजी बहुत बाधा दे रहे हैं, कहते हैं मंदिर में मत जाओ। और कुछ काल के बाद देखा जाता है कि पिताजी भी वैसे ही तिलक मार कर आने लगे, ऐसा देखा जाता है। ये प्रकट पीढ़ी तरी की नहीं, और कदाचित जो बच्चा होगा भगवान की कृपा से तो उसको तो कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो दो पीढ़ी तो प्रकट तरी, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, तो उसका बच्चा होगा तो उसको भी भक्त होना ही है, भगवान से प्रेम करेगा, पीढ़ी तो ऐसे तर जाती है। तो पुत्र है, भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुत्र इसी से उत्पन्न करता है कि एक दिन यह पुत्र काम में आएगा। पिता से कोई गलती हो गई है तो पुत्र जाकर गया में श्राद्ध करेगा। भगवान यह शब्द बोले वाल्मीकि रामायण, आप पढ़ सकते हो। भरत, पिता आशा रखता है कि हमारा पुत्र गया जी में श्राद्ध करेगा, शुभ कर्म करेगा, भगवान की आराधना करेगा, देवताओं का आदर करेगा, तो उस शुभ कर्म से पिता तर जाएंगे, गलती माफ कर दी जाएगी। तो मैं जानता हूं कि हमारे पिताजी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे हमें बहुत आसन, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसी प्रेम के कारण वे अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते, हमको वन में नहीं भेजना चाहते। लेकिन क्या मुझे वन में नहीं जाना चाहिए? यदि मेरा सच्चा प्रेम मेरे पिता से है तो मैं तो निश्चित वन में जाऊंगा, और तुमको उन्होंने राज्य दिया है इसलिए राज्य संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं किसी भी हालत में पिता के धर्म को बाधित नहीं करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। रक्षित धर्म है, धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो इसलिए मैं तो निश्चित जाऊंगा, मुझे वन के दुख की परवाह नहीं है, मुझे पिता के धर्म को देखना है, उनके वचन को पूरा करना है। और भरत, मैं अपने पिता का योग्य पुत्र बनना चाहता हूं, अयोग्य नहीं। अब इस बात से अब क्या हो, सबको मानना पड़ा है। भगवान तो वैसे भी बोलने वाले चतुर है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन को पोट पाट कर लड़ा दिए, गीता बोल करके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दिखा दिया, सब मर गए। तो मर ही गए तब क्यों आप खड़ा कर रहे हैं? जब सब मर ही गए, अर्जुन ने कहा कि जब सब मर गए तो क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं जसो लभस्व, चलो चलो नाम कमाओ। कर दिए, बड़ा करिश्चे वचनम तव। आपके वचन का पालन करना। बोलने वालों में सबसे वरिष्ठ सबसे विद्वान भगवान तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ इसको भगवान राम के समान कोई नहीं जानता। फिर कब कहां बोल क्या बोलना चाहिए क्या व्यवहार करना चाहिए भगवान इसमें तो परम पारंगत। भरत को समझाकर अयोध्या भेज देना कौन बड़ी बात है। जब अर्जुन को तैयार करके अपने भाइयों को पितामह को गुरु को मरवा दिए इतना इंस्टिगेट करके तो फिर भारत को लौटा देने कौन बड़ी बात है। यह अभी भगवान की एक कुशलता है बोलने की। यद्यपि इसको वाक चातुरी नहीं कहेंगे, भगवान ने जीवन का सत्य बताया, आत्मा और देह के पार्थक्य को चालू किया उन्होंने, बिल्कुल सत्य प्रवचन है भगवान का। मैं तो विनोद ने ऐसा कह दिया कि भगवान ने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो भगवान बोले हैं युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में वह तो अद्भुत बात है, सत्य है। उस फैक्ट को सुन करके अर्जुन कन्विंस्ड हो गए। ठीक कर इससे बचन भगवान पूछते हैं कि अर्जुन सुन लिया न एकाग्रचित से, कचित एतत् श्रुतम पार्थ हे मेरी बुआ के पुत्र, इसको सुन लिया न तो एकाग्रण चेत सा, एकाग्रचित से सुना न कि तुम्हारा मन कहीं और गया था। जब मैं गीता बोल रहा था तो मैं दूसरी तरफ मन नहीं गया था ना, एकाग्रचित से सुन लिया न क्वचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। एक ही श्लोक में दो संबोधन कर रहे हैं पार्थ और धनंजय। हे धनंजय, अज्ञान से जो तुम्हारा मोह उत्पन्न हो रहा था, मैं हूं ये लोग मेरे हैं, ये नष्ट हुआ कि नहीं कि फिर से प्रवचन चालू करूं? तो युद्ध तो रुका ही है, अब कहो यही गीता का पाठ होता रहे। जब तक तुम्हारे संशय नहीं मिट जाएगा तब तक मैं तैयार हूं बताने के लिए। भगवान के कहने का आशय है, अगर पूरी बात समझ में न आई होगी तो शुरू से ही चालू करूंगा, और नहीं कोई कोई कहीं कहीं शंका होगी तो पूछो, उसको पुष्ट करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनं तव। मोह नष्ट हो गया है, अज्ञान मेरा नष्ट हो चुका है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा और मुझे स्मृति मिल गई है मैं कौन हूं, मैं आपका नित्य दास हूं नित्य मित्र हूं, ये समझ में आ गया। मैं और किसी का नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, आप मेरे हैं। स्मृति का ये अर्थ हुआ, मेरे समझ में आ गया कि आप मेरे सब कुछ। गत संदेह स्थित उसमें, मैं अपने स्वरूप में हूं, गत संदेह मेरा संदेश चला गया, तब अब क्या करोगे? कर इससे बचरम तब, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो भगवान ने कहा तो उठाओ धनुष, अब देर हो रही है। उठाया धनुष अर्जुन ने। अर्जुन वास्तव में सबसे योग्य पात्र हैं इस ज्ञान को लेने में। प्रभुपाद जी बारम्बार कहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को ऋषियों को छोड़कर भगवान अपने मित्र को एक क्षत्रिय को सैनिक को यह गीता दी है। ये अर्जुन वास्तव में ऐसे योग्य व्यक्ति थे। करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा। पहले कह रहे थे न जोग से, कह रहे थे मैं आपका शिष्य हूं मुझे सिखाइए, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। और भगवान को युद्ध नहीं सिखाना, जो कहते न ज्योति गोविंदन उक्तवा तूषणीम बभुव, इतना कहकर चुप हो गए, युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखाइए, मैं धर्म के विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक रिजर्वेशन रहकर समर्पण कर रहे थे, इतना नहीं करूंगा। भगवान जब ज्ञान दिए तो अर्जुन का संशय नष्ट हो गया। कहते कर इससे बचना तो, और उन्होंने युद्ध किया। भगवान ने बोलने वालों में विशारद, आज तक देखिए उनका बोला हुआ वेद है शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ करते रहते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और किसी विषय में वेद का उदाहरण देते हैं, वेद भगवान का वाक्य। तो बहुत सुंदर प्रवचन है, स्थान स्थान पर शास्त्रों में भगवान बोले हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आए अवतार लिए और कुछ बोले नहीं चुपचाप चले। एक्शन द्वारा सिखाए और वचन से उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा उपदेश है, भगवत गीता तो है ही, गीता से भी ज्यादा भागवत में है, और इसके साथ ही साथ महाभारत में भगवान के प्रवचन दिए गए हैं, अन्य पुराणों में दिए गए हैं। इतना अधिक प्रवचन दूसरे अवतार में भगवान नहीं किए हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है और हम ही लोगों पर कृपा करके भगवान ने वो दिया है, हमें उसे पढ़ना चाहिए और विस्तार करना चाहिए। तो यह भरत जी से शिक्षा मिलती है कि भाई से प्रेम करना चाहिए और पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसा। वे अपने सुख दुख पर विचार कर ही नहीं रहे थे, अपने पिता के सद्गति पर विचार कर रहे थे। यदि उनके पिताजी तो पूर्ण सद्गति में थे, जो राम में मन लगा था उनका, और राम राम कहते हुए शरीर छोड़े थे, उनके सद्गति में क्या संदेह हो सकता है। लेकिन तथापि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता को सुख दे, सद्गति दान। केवल मरने के बाद ही सद्गति की न सोचे, जीवित अवस्था में भी उनको सुख दे, उनको भागवत सुनावे, उनको कीर्तन सुनावे। ऐसा नहीं मरने के बाद सोचने लगे अब कैसे तरेंगे, और जब जीवित थे तो पानी भी नहीं दे रहे। एक बार एक की कथा है, शाहजहां जब जेल में बंद था तो औरंगजेब गया उसके पास, उसका लड़का था औरंगजेब, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई को काट दिया था। यही उन लोगों का संस्कार होता है। वो गया एक दिन पूछने आगरा के कारागृह में, कैसे हैं बाप जी, क्या भाव है, से पूछता था। तो शाहजहां कहता है, अरे नालायक, तुम हिंदुओं को इतना सता रहे हो, हिंदुओं जैसा अच्छा कोई नहीं। हिंदू लोग तो मरने के बाद भी अपने बाप को जल देते हैं, तुम तो जीवित अवस्था में पानी के बिना मुझे मार रहे हो। इस समय भर पेट पानी नहीं मिलता था शाहजहां को, औरंगजेब ने कहा था कि इसको भर पेट भोजन मत देना और जितना पानी पिए उतना मत देना, ये कोटा भर दे देना, उतनी भर पिए बस। इतना क्रूर था वो। तो उसी समय वो शाहजहां कहा कि धन्य है हिंदू लोग जो कि मरने पर भी पिता को जल देते और जीवित अवस्था में भी नहीं दे रहा। तो जीवित अवस्था में तो जरूर देना चाहिए, कपड़ा देना, भोजन देना, जल देना, ज्ञान देना। पिता के पास, माँ के पास बैठना भी माता पिता की एक सेवा है। देखा गया माता पिता का स्वभाव है कि पुत्र उनके पास बैठता है, कुछ बातें करता है तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। आजकल के बेटा ऐसे है कि कहीं से आएंगे तो सीधे रानी के भवन में चले जाते हैं, पिता के पास नहीं जाते। ऐसे ऐसे पुत्र हो गए, क्या नहीं होना चाहिए। विभु का, भगवान का अवतार, मनुष्यावतार केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। वास्तविक गुह्य गोपनीय बात यही है, भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं, भगवान मनुष्य बनाए हैं। तो भगवान यदि वेद में कथित धर्मों का आचरण करके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा मनुष्य को, कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पत्नी से क्या व्यवहार करना चाहिए। बच्चे बनने से ही अध्यात्म में भी उन्नति होती है, परंतु आवश्यकता पड़े तो भगवान के लिए समाज को छोड़ा जा सकता है, गोपियों ने पतियों को छोड़ा। शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा है, इस लोक में हम किस तरह से जिए, कैसे व्यवहार करें जिससे हमारे परलोक में उन्नति हो, अध्यात्म उन्नति। अच्छा, दूसरी शिक्षा जो भगवान कृष्ण देते हैं कि हमें सबसे अधिक चिंता है, सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए, कृष्ण के साथ संबंध पर। हम ये देह है ही नहीं, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, ममई वांसो जीव लोक के जीव भूत स्मरण। तो आत्मा को चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता देखे, अपना जो असली स्वार्थ है, परमार्थ है, उस पर दृष्टि रखे। जीव प्राय भूल जाते, सोचते हैं हमारा परिवार है, हमारा गांव है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे, इन नई भावनाओं में भूला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आकर के अपना आकर्षण, अपना सौंदर्य, अपनी महिमा, अपना माधुर्य दिखा करके सांसारिक स्नेहों को तोड़ दिए। जो हुआ वो छोड़ छोड़ करके भगवान में अनुरक्त हो गए। जहां गए वहां बात होती थी, तो वह ज्यादा सत्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो प्रभाव हो रहा है। परंतु फिर भी उस सत्य तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की लीलाएं सीढ़ी है, सोपान। प्रभुपाद जी बताते हैं चार नियम, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग इत्यादि। तो यह अभी भक्ति है। कोई सोचे कि इसका तो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जो मन में अभी खाओ और भगवान का नाम गाओ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दोनों लीलाएं एक है, पूरक है। जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों मिलकर एक ग्रंथ है, वैसे ही वास्तव में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाती है परमार्थ में और लोक में। तो दोनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बहुत ध्यान से। जब उतना जितेंद्रिय व्यक्ति, सुशील व्यक्ति भी एक स्त्री में आसक्त होने के कारण इतना पागल हो गया, तो और लोगों की क्या दशा होगी। दुख होता है, भले लोग न पूछें पेड़ लता से चाहे आदमी से, लेकिन भीतर भट्टी जलती रहती है विरह में। यहां तक मैं देखा हूं एक स्त्री को, एक पत्नी को डांटते एक पति कहता है, तुम हमारे ही तरफ क्यों नहीं देखती हो, क्यों दूसरे तरफ देखती है? और बहुत बेचारा दुखी था। तो पत्नी यदि दूसरे तरफ देखे तभी भी बहुत दुख होता है, क्यों देख रही है दूसरे तरफ, जलन होती है। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। और व्यर्थ मनुष्य शंका करता है, यह भी मानो उस मस्तिष्क की कमजोरी है, व्यर्थ शंका करता है किसी भी बात। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आप तो वास्तव में आप प्रश्न नहीं कि आप तो कमेंट किए तो सब समझ ही रहे हैं। कर दिया तो अब सीधे आरोप करती है तुम गया था किसी न किसी के फेर में। और हो सकता है बेचारा ऑफिस में देर किया या कहीं रह गया, लेकिन उसका तो माथा खराब होने लगता है। अद्भुत ये बंधन है और मोह है परस्पर। छोटी छोटी बात के लिए आदमी इस तरह चिंता किया करता है, जबकि चिंतन भगवान का करना चाहिए, भगवान का रूप गुण मन में आना चाहिए।
मैं समझा था कि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस एरिया में रामायण का बहुत प्रचार है। और रूपा जी के मूवमेंट में 30-25 साल बच्चा देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में ज्यादा सुनने को मिल रही है। और सुधार भी बहुत सुना है कि हम सुधर के रहने वाले होने के कारण, लेकिन जब से रूपा जी के ने बताया है जिस ढंग से, उसको सुनने के बाद में रामायण और उन कथाओं का और उन लोगों से सुनने की, आपके बोलने की स्टाइल और जो बोलने का तरीका है और रामायण का कहने का तरीका है और भागवतम में और वाल्मीकि रामायण से आप उसको कितने किस ढंग से कनेक्ट करके उसको रूपा जी की फिलॉसफी के साथ में उसका सामंजस्य बताते हैं, लेकिन उधर का देखने के बाद एक मन में ये भावना सी हो गई थी कि ये लोग मतलब त्यागों का ही मतलब भावना ऐसी है कि ठीक है, इसे पायस इंटरटेनमेंट, गोइंग टू कथास, इसे पायस इंटरटेनमेंट, तीन तरह का होता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट राज्य इंटरटेनमेंट एंड दिस हियरिंग कथास
धार्मिक मनोरंजन।
तो उस रामायण क्षेत्र को सुन करके और प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताया हुआ तरीके से, इसमें एक बहुत जीवन में एक परिवर्तन सा लगता है। तो उस दृष्टि को और इस दृष्टि को कैसे, क्योंकि आपके कहने से ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि एक्चुअल ढंग से अगर वहां देखा जा रहा है और उन लोगों के जीवन को देखा जा रहा है उससे ऐसा लग नहीं रहा, तो कैसे इसको सामंजस्य लाया जाए?
तो वास्तव में वो तो रामायण की कथा, इसकी कथा तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि भेद है, लेकिन जहां तक प्रचार की बात है कथा की, तो भागवत की और गीता की भी कथा है वो लोग ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल भिन्न है प्रभुपाद जी से, बिल्कुल भिन्न है। शायद इसीलिए प्रभुपाद जी ने सप्ताह शब्द के विषय में अच्छा नहीं कहा है ना। जब भी लिखने का अवसर आता है तो प्रभुपाद जी सप्ताह की बहुत अवहेलना करते लिखने में, लेकिन हम लोगों को गुणग्राही सारग्राही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आचार्यों की शैली होती है, किसी कार्य को शिक्षा को जब कोई व्यक्ति बढ़िया से ग्रहण नहीं करता है तो उसको बिल्कुल अप्रमाणिक कहना चालू करते हैं, क्योंकि गड़बड़ ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं। जैसे भगवान बुद्ध देव, भगवान बुद्ध ने देखा कि लोग कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेद के अनुसार पशु का वध करने यज्ञ में हिंसा नहीं है, और इतना हिंसा का प्रचलन हो गया कि पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया ब्राह्मणों के डायरेक्शन में। तो भगवान का अवतार हुआ इसके लिए, निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। भगवान बुद्ध आए और उन्हें सीधा कह दिया कि हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि वेद उन्हीं की रचना है। जब तक वेद को लोग मानते तब तक वो हिंसा नहीं रोक सकते थे, तो भगवान ने कह दिया वेद अप्रमाणिक, इसको उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की रचना है या नहीं, या मनुष्य की रचना है या नहीं, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। तो भगवान में इतनी प्रतिभा थी कि अब बड़े बड़े पंडित भी उनसे तर्क करके हार गए, भगवान के सामने कौन जीत सकता है। लेकिन भगवान टोटल अटपटांग काम करके गए, अगर देखा जाए बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला, ठीक नहीं किया। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए निंदसी यज्ञ विधे अह श्रुति जातम, जो वेद में लिखा गया है उसकी निंदा भगवान ने किया, उस समय जरूरत थी। यदि वेद को अप्रमाणिक लोग नहीं मानते तो हिंसा नहीं रोक सकते थे, हिंसा रोकना उद्देश्य था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो भागवत सप्ता या रामचरितमानस आदि के विषय में लिख दिए हैं, तो इसी प्रकार का प्रभुपाद जी का इंटेंशन था कि जो धाराएं चल रही है बस उसी में से एक धारा इधर इस काल में न खुल जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह देते थे इसमें मायावाद है, चाहे ये है, इसको मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, अपने चित्त को केंद्रित रखा जाए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि भगवान बुद्ध का कि अब वेद समाप्त ही कर दिया, उसके बाद ही भगवान विष्णु ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में, और शंकराचार्य आए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से वेद को प्रमाणित सिद्ध कर दिया। थोड़ा थोड़ा बौद्धों के मेल से उन्होंने फिलॉसफी दिया वेद में, उन्होंने निर्विशेषवाद निराकारवाद जैसे बौद्धों का शून्यवाद है तो उनसे थोड़ा टैली करते हुए सिद्धांत दिया। तो जितने भी बौद्ध सन्यासी थे उन सब ने वेद को प्रमाण मानना चालू कर दिया। जैसे वेद तो हमारी बात कह रहा है, श्रुतियां उपनिषद सब हमारी बात कह रहे हैं, शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार का विघटन होता रहता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो किया वह अभी 100% उचित नहीं था, लेकिन जरूरत थी। यदि उसमें निर्विशेषवाद नहीं दिया जाता तो बौद्धों के दिमाग में जो शून्यवाद भरा हुआ था उसको निकालना कठिन था, तो लगभग दोनों को एक करके वो देखने लगे। तो प्रभुपाद जी को कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी प्रापाश्चात देशतारी, ये बौद्ध हो चाहे शांकर हो, निर्विशेषवाद मानने में दोनों एक नंबर के हैं, लेकिन शांकर मत में किसी भी विषय में वेदों को शास्त्रों को प्रमाण दिया जाता है, भले उसका अर्थ जो कुछ किया जाए। तो सारे देश में लोग बौद्ध धर्म छोड़ छोड़कर शंकराचार्य के अनुयायी हो गए और फिर से सनातन धर्म की पताका फहराने लगे। बौद्ध राज्य धर्म बन गया था, राजा लोग उस धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन शेरपा शंकराचार्य ऐसा किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि शंकराचार्य बौद्ध धर्म को ऐसा आलिंगन में लिए कि उनके आलिंगन में ही खत्म हो गया ऐसा वो लिखे है, विरोध नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब ये गड़बड़ी हो गई कि निर्विशेषवाद भर गया, तब स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद का ये अर्थ नहीं, सच्चा अर्थ ये। तो हम लोगों को एक उदार हृदय से अपने पूर्वजों के विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बहुत रिजिड माइंड से कुपमंडूक बनकर ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ लाभ जो मिलने वाला है उसे वंचित रह जाएंगे, घाटे में पड़ जाएंगे। बहुत अधिक अनन्य जो लोग बनते हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, तो प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह पर दूसरा कहा है, तो उसका सामंजस्य मिलाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्यों दो तरह की बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो उसको बहुत ही सावधानी से उनके आशय को, इंटेंशन को समझ करके और उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो सीधे अगर कोई कहते कि नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है सप्ताह नहीं सुनना चाहिए, तब तो मंदिर में जो कथा चलती है वो अभी तो 7-7 दिन की होती ही है ना, और 4 सप्ताह हुआ। सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है, लेकिन हम लोग भी सप्ताह चालू किए। और प्रभुपाद जी ने जसोमती नंदन प्रभु को डायरेक्ट कहा था कि तुम कहो सप्ताह। वो हमसे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमको आज्ञा दिया, लेकिन हमने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप कर रहे हैं, ऐसे वो कह रहे थे हमसे। तो 7 दिन में भागवत के कुछ टॉपिक को लेना है और सुनाना, इसको थोड़े प्रभुपाद जी मना किए थे। लेकिन एकदम रिजिड अर्थ ले लिया जाए तो गड़बड़ होता है। एक लोक में बात लोग कहते हैं, एक लड़का था बहुत ही अपढ़ परिवार में, मूर्ख परिवार में। उसकी माँ उसको एक दिन कही कि बेटा जाओ ससुराल। तो पूछा, लड़का कहा कि ससुराल नहीं जानता हूँ किधर है। तो कही कि सीधे रास्ता जो जा रहा है कहीं इधर उधर मत मुड़ना, चले जाओ। तो जा रहा था तब तक रास्ते में बीच में एक पेड़ मिल गया, एक झाड़ मिल गया। तो कहा, वो सोचने लगा, माँ ने कहा है कि दाएं बाएं मत होना, तो पेड़ पर चढ़ करके फिर उतरा ऐसे, और इसके बाद क्या, इतना अच्छा प्रपोर्ट समझ लिया माँ का। अरे कुछ आशय तो समझना चाहिए कि इस आचार्य के कहने का आशय क्या है, क्या मंतव्य है। एक बार की बात है, श्रीपाद शंकराचार्य की घटना है। वो कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म है। वास्तव में सत्य वाक्य है, वेद का वाक्य है, शंकराचार्य का वाक्य नहीं है। जब ब्रह्म की शक्ति है जगत, तो एक प्रकार से ब्रह्म है, तो सर्वत्र भगवान है, सब जगह ब्रह्म है। तो उनका एक शिष्य जा रहा था, और तब तक उधर से एक पागल हाथी आ रहा था, और हाथी पर महावत बैठा हुआ था। तो महावत ने कहा, दूरम अप्सर, दूर जाओ, हाथी मार देगा। तो ये कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, क्यों मारेगा। तो आया हाथी, सूंड में लपेट करके उसको बहुत दूर फेंका, कुचला नहीं फेंका, और वो तो बेहोश हो गया कुछ देर तक। इसके बाद दवाई हुई, ठीक हो गया, जाकर श्रीपाद शंकराचार्य से शिकायत किया, आप कहते थे सब में भगवान है, सब जगह ब्रह्म है, और हमको तो इस तरह से हाथी ने दुर्दशा कर दिया, वहां तो ब्रह्म नहीं है। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहे कि हाँ, तुम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे और महावत में नहीं देख रहे थे, वो ब्रह्म मना कर रहा था ना। तो फॉलोवर ऐसे हो जाए तो बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी। देखना चाहिए, आशय समझना चाहिए देश काल के अनुसार, तब सब ठीक होता है। लेकिन जब हम लोग मान लेते हैं और द्वेष और घृणा की भावना होती है, तो वहां हम लोग सत्य को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। किसी के पुस्तक को देखे हमारे मन में मायावादी है। जब तुम्हारे मन में मायावाद ही बैठा हुआ है, तो इसीलिए तुम सब में मायावाद देख रहे हो। चैतन्य महाप्रभु तो गोप बालकों को देखे जमुना गंगा जी के तट पर, तो कहते हैं वृंदावन में आ गया, हे कृष्ण के सखाओं बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जमुना कहाँ है, ये कहाँ है। जो मन में जो बात बैठी रहती है वही सर्वत्र दिखाई देती है। और बिना पढ़े बिना समझे बिना सोचे हम किसी ग्रंथ पर किसी राइटर पर यदि आक्षेप करें तो ये हमारी दुर्बुद्धिता सिद्ध होती है, न कि उस ग्रंथकार की कमी सूचित होती है। अगर ऐसे कोई सुने कहते हुए और अभिज्ञ व्यक्ति होगा तो समझ जाए ये मूर्ख है, ये नहीं जानता। और इसी इन्हीं सब आइडिया के कारण हम अपने को इतना रिजर्व बंद कर लेते हैं कि किसी के गुण को ग्रहण भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जैसे कल कथा आई थी, वाल्मीकि जी कहते हैं सब अवगुण तज सबके गुण गहन, अवगुण छोड़ करके गुण ग्रहण कर लेते हैं। आपका प्रश्न है कैसे इसको हम लोग मिलाए, तो वास्तव में उदारता पूर्वक बुद्धिमानी से आदमी विचार कर तो भगवान सहायता करते हैं, प्रभुपाद जी के लेख सहायता करेंगे, पुस्तकें सहायता करती है, प्रभुपाद जी के भक्त है सहायता करते हैं। लेकिन एक अपनी भावना तो होनी चाहिए, जब कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तब उसको रास्ता बताने वाले बताते हैं, उसके मन में है कि मैं पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, सेफ रास्ते से जाऊं, तो बताने वाला बताता है। और जिसको जाना ही नहीं है, केवल अन्य रास्तों की निंदा करनी है, तो उसको क्या बताकर कोई करेगा। आप अगर कहिए कि ये रास्ता जाएगा तो कहे नहीं वहां तो एक्सीडेंट हो गया था, ये है वो है, ठीक है इधर बताए नहीं ये भी गड़बड़ है, और तुमको चलना है कि नहीं, क्या ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस को परेशान करते हो पूछ करके। जानना है तब न पूछना चाहिए।
हरे कृष्ण। महाराज रामायण में रामचंद्र मर्यादा पुरुष, और ये देखा गया है कि भाई के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार, और पुत्र और पत्नी के प्रति प्यार दिखाया गया। और यहाँ तक ये रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब उनको पिताजी भी याद आते
हैं,
जहाँ तक कि पिताजी अपने प्राण दे देते हैं अपने, तो ये मो नहीं ना, व्हाट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द मो एंड प्यार।
सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मोह है, लेकिन यह मोह है लीड करता है भगवान के मोह के प्रति, भगवान में मोह पैदा करना है। ये जो सांसारिक मोह है, ममता है, संबंध है, इसकी आवश्यकता है। जैसे आप पक्का घर बनाते हैं सीमेंट का, तो पहले एक टेम्पररी घर बनाते हैं, उसको सेंटरिंग या लिंट क्या कहते हैं, सेंटरिंग करते हैं छत डालने के लिए, तो उसी पर वो भवन टिकेगा। बाद में इसको हटा लिया जाता है, वो भवन टिक जाता है, छत टिक जाती है। तो ये जो संबंध बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, इसकी सार्थकता है, ये व्यर्थ नहीं बनाए गए हैं। इसके द्वारा ये व्यक्ति को सिखाया जाता है कि भगवान से ऐसा ही संबंध किया जा सकता है। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति है मनुष्यों में, केवल विषय को बदलना है, भगवान में करना है। लेकिन जब प्रेम करने की प्रवृत्ति रहेगी तभी वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा, नहीं तो सब शंकराचार्य के मत में चले जाएंगे। जिसको मान लीजिए अपने बच्चे के फोटो से प्रेम है, पत्नी के फोटो से प्रेम है, तो हो सकता है आगे जो ही विषय बदलेगा तो भगवान के फोटो में उसका मन आसक्त हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से ही निराकार में उससे प्रेम करता है तो वो तो भगवान के फोटो से ही प्रेम नहीं करेगा। तो ये जो संबंध भगवान ने बनाया है, इसके पीछे भगवान की यह योजना है, भगवान को अपने पर्सनल संबंधी के रूप में रियलाइज करने की यह प्रक्रिया भगवान ने बनाई है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, इस बात नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि यह जो प्रक्रिया है, यह मनुष्य के भौतिक जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। जब ठीक से जिएगा तभी भगवान का भजन करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। आज सबको कहा जाए कि भगवान के साथ संबंध है, छोड़ो स्त्री को, काम धंधा छोड़ो, जंगल में चले जाओ, कौन जाएगा बताइए, कोई जाएगा? आधार है ना भगवान के भजन के लिए या और भी किसी काम के लिए, परिवार आधार है।
और परिवार है तो परिवार में जथा योग्य स्नेह रखना ही चाहिए। हाँ, एक अति ममता जो हो जाती है, अति स्नेह जो हो जाता है, उसको मोह संज्ञा दी जाती है और वह ठीक नहीं है। जैसे भगवान ने अपने वो कथा लिखते हैं कालाचंद गीता में, एक व्यक्ति कुछ कथा सुन करके या जैसे तैसे विरक्त हो गया, चला गया घर से बाहर, गांव से बहुत दूर रहने लगा, और उसका एक पुत्र था छोटा सा उसके पत्नी के गोद में। तब वह पत्नी चिंता करने लगी कि पति कहाँ होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। घर पर थे तो मैं बना करके भोजन देती थी, कैसे होंगे। गरीब घर का वो लड़का था और विरक्त हो गया, चला गया। एक दिन जोहते जोहते उसकी पत्नी गई उसके पास और बच्चे को गोद में लेकर के गई थी और भोजन बना करके ले गई थी। कई दिन से वो लड़का भूखा था, वो पति। तो जब ये भोजन कराने लगे, जा करके प्रणाम किया और कहने लगे कि भोजन कर लीजिए, आप कई दिन से खाए नहीं, पता लगा है। तो वह व्यक्ति देखा अपने बच्चे को, अपने पुत्र को और पत्नी के इस भाव को, मैं इनकी उपेक्षा कर रहा हूं और इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। अवश्य भगवान के द्वारा यह बहुत ही कीमती वस्तु सबके हृदय में दी गई है। तो वह व्यक्ति वह लौट आया परिवार में और उसी दिन संकल्प किया कि भगवान से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे मेरी पत्नी मुझसे प्रेम कर रही है। तो प्रेम वासना जीव में स्वाभाविक है, इसी से परिवार बना है ना आप, और संसार में सब जगह परिवार है, लेकिन भारत में वैदिक काल से ही यह परिवार बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है और इसका केंद्र अध्यात्म रहा है। अब बिगड़ गया, अब घर घर में टीवी आने लगी, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। टीवी से कौन आध्यात्मिक प्रगति होती, तो उससे भी कुछ लोग करते हैं, कथा होता सुनते हैं, लेकिन जो भी परिवार का आधार दिया गया उसमें मुख्य आधार अध्यात्म का है, भोगों का नहीं। आप स्त्री पुरुष के व्यवहार के विषय में शास्त्र में पढ़िए, स्पष्ट लिखा गया है कई जगह, मैं डायरेक्ट पढ़ा हूं, कि अपनी पत्नी के साथ पुरुष वास कर सकता है महीने में एक बार, जब उसका रजो धर्म होता है, रजा श्राव होता है, 4 दिन के बाद वह अपनी पत्नी का सहवास कर। कहां है भोग विलास, कहां माया ममता। तो वेद शास्त्र कृपालु है, हमको ऐसी वो शिक्षा देता है, छूट देता है। इसी तरह पुत्र का है और सब भोगों का तो कोई प्रश्न है। पुत्र जन्म लेता है, 4 वर्ष घर पर रह करके 5वें वर्ष में वो चला जाता है वन में, ऋषि कुल में, गुरु कुल में, माता पिता से कभी भेंट नहीं, गुरु के आश्रय में रहकर वेद शास्त्र पढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या मोह है, पिता त्याग देते थे स्वयं ही। अच्छा, जब पुत्र आकर 25 वर्ष की अवस्था में विवाह करता था तो घर का काम संभालता था, पिताजी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते थे। उस समय लगभग 50 वर्ष के हो जाते थे, वानप्रस्थ जीवन, पत्नी के साथ वृंदावन घूमना, माया पर घूमना, चाहे जहां भी घूमना है, सो वानप्रस्थ जीवन। और इसके बाद पत्नी को पुत्र के साथ रहकर सन्यासी हो जाते। तो पुत्र को राज देकर पिता वन में चले जाते थे, क्या वो मोह है। मोह रहने पर कोई पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधु को छोड़कर वन में चला जाएगा और बताएगा भी नहीं कि मैं इस वन में रहूंगा और यहां रहूंगा। कितनी सुंदर स्थापना की गई है हमारे वैदिक इंस्टीट्यूशन में, वर्ण धर्म आश्रम धर्म। लेकिन अब तो इतना बिगड़ गया है कि आदमी अब सोचता ही नहीं है कि ये हो सकता है या होना जरूरी है। त्याग ही त्याग सिखाया गया है। एक मनुष्य के जीवन में 25 वर्ष तक केवल गृहस्थ रहने की अनुमति है। इधर 25 वर्ष अध्ययन किया, 50 वर्ष का होने पर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास, तो 75 वर्ष तक तो उसे भगवान के भजन में ही निरंतर रहना है। और गृहस्थ होने पर भी वर्णन है कि यहाँ ड्यूटी रखे, भगवान की मूर्ति रखे, पूजा करे, भागवत सुने, वैष्णव का सत्कार करे, तीर्थयात्रा करे वाराणसी में और चित्रकूट मथुरा आदि में निवास करे, घूमे, सत्संग करे, अपनी चेतना को भगवान में बढ़ाए। क्या माया है, क्या मोह है। ये सब चातुर्वर्ण माया सृष्टम, जो भगवान कहते हैं चार वर्ण और चार आश्रम मैं बनाया हूँ, तो भगवान हमारे हित के लिए बनाए हैं, न कि मोह में फंसा करके नरक में भेजने के लिए। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसका उपयोग है, यह मोह नहीं है यदि वैदिक शिक्षा के अनुसार हो तो। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, न माने तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा गया है कि ये लोग हमारे ग्रंथ को प्रमाणिक माने तब पढ़ना, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं। सूर्य एक चमकीला पदार्थ है, उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो चमक ही रहा है, उसको कोई इस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, जैसा है वैसा है। किसी के नहीं मानने से क्या होगा, नहीं मानने वाले तो भागवत को कहते हैं कि ये वेदव्यास देव की रचना नहीं है, तो क्या उनके कहने से ऐसा हो जाएगा? आपने नहीं पढ़ा होगा, हम तो पढ़े हैं हिंदी में कैसे कैसे भागवत के विषय में लिख ली, तो कहते हैं महाभारत प्रमाणिक है भागवत नहीं। वाह, खुलम खुला ये बातें। एक लिखा है भागवत में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, एक पुस्तक निकली कि भागवत में व्याकरण की दृष्टि से कहाँ कहाँ अशुद्धि है। मैं कहा कि इसको यही दिखाई दे रहा है, उल्लू कहीं के ये प्रमाणिक नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या रामचरितमानस को प्रमाणित करने में? क्या उस ग्रंथकार ने कहा है कि कोई प्रमाणित करे तब पढ़ना? कोई भागवत को कह दे अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है, जैसे कहते हैं, मैं कई किताब पढ़ा हूं इसके विषय में, ये प्रमाणिक नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं वेद प्रमाणिक नहीं है, ये 5000 वर्ष का, ऐसा आपने सुना होगा। कुछ कहते हैं भगवान की मूर्ति पूजा प्रमाणिक, तो क्या किया जाएगा? अब हम उनसे हाथ जोड़ करके सर्टिफिकेट लेंगे, सरकार कह दीजिए कि प्रमाणिक है मूर्ति पूजा, तब तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे तुम कुछ भी कहते रहो, प्रमाण है वो प्रमाण है, हमारी अपेक्षा नहीं रखता है।